Audio description supported by Sapient.
दूर से एक लाल रोशनी हमारी ओर आती हुई इसी रंग में शब्द स्क्रीन पर शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल पार्टनर हंगामा गेम शास्त्र रेड पांडा ग्राफिक मीडिया मीडिया पार्टनर एंड पिक्चर्स जी सिनेमा ब्राइट ZETC बुक माई शो आज तक अमर उजाला हेडलाइंस टुडे रेडियो मिर्ची एजेंसी पार्टनर्स एवरी मीडिया स्पाइस निर्वाणा मीडिया डायरेक्ट एक्सेस मीडिया टू विन चमकते हुए बहुत सारे हीरे और एक साथ जुड़कर बन गए UTV स्टार्स मीडिया पार्टनर द ऑफिशियल चैनल ऑफ बॉलीवुड पावर्ड बाय डिज्नी टीवी एक्शन बिंदास UTV UMP मूवीज UTV मूवीज UTV स्टार्स UTV वर्ल्ड मूवीज इन लविंग मेमोरी ऑफ GP सिप्पी विजय सिप्पी इन एसोसिएशन शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड GP Sippy's Sholay, directed by Ramesh Sippy. 3D stereoscopic conversion by Maya Digital Studio. Director of Visual Effects and Stereoscopy, Siddharth Mohan Jaikar. Stereoscopic Creative Director, Frank Foster. Stereoscopic Supervisors, Hemat Shinde, Ram Dhumre. Visual Effects Supervisor, Dinesh Sehgal. Supervising Producer, Dheeraj Berry. Line Producer, Sayyed Sher Abbas. This donation by Famous Studios, DI and Lab, Prasad Labs Private Limited. DI Supervisor Jahangir Chaudhary, DI Colorist Kiran Kumar Kupta, DI Executive Producer Mangesh K. Bhalirao, DI Producer Deepak Srivastava. Music recomposed and recreated by Raju Singh. Sound Design Parkshit Lalwani, Kunal Mehta, mixed in Dolby Atmos by Media Artist Chennai. Publicity Designers Secret, PR and Communications Spice, Visual Promotion Trigger Happy, Business and Finance Zubin Mistry, 3D Co-Producers Shahzad Sippy, Dhaval Jayantilal Gada. कुशल कांतिलाल गाडा रेशमा कड़ाकिया 3D प्रोड्यूसर शान उत्तम सिंह साचा विजय सिंह सप्पी रेलगाड़ी हमारी ओर आ रही है वीरान प्लेटफॉर्म पर रामलाल धोती कुर्ता पहने रेलगाड़ी को आते हुए देख रहा है धुआं छोड़ता हुआ स्टीम इंजन ठीक हमारे सामने आकर रुका कोच में से वर्दी पहने जेलर उतरा और रामलाल के पास आया दोनों स्टेशन की छोटी इमारत के अंदर गए कैमरा हमारे बाईं ओर घुमा इमारत की दूसरी ओर पेड़ के नीचे दो घोड़े बंधे हैं रामलाल ने लगाम खोली एक घोड़े पर जेलर बैठा दूसरे घोड़े पर रामलाल बैठा और अब दोनों बाईं ओर को जा रहे हैं स्क्रीन पर लाल रंग में टेक्स्ट सिप्पी फिल्म्स प्रेजेंट पत्थरों के बड़े पहाड़ दोनों अब बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं फिल्म का नाम शोले धर्मेंद्र संजीव कुमार हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी एंड इंट्रोड्यूसिंग अमजद खान विद एके हंगल सत्येन कप्पू इफ्तकार लीला मिश्रा विकास आनंद मैकमोहन केशव मुखर्जी सचिन मास्टर अलंकार विजय खोटे मेजर आनंद बिहारी भगवान सिन्हा अरविंद जोशी भानुमति मुश्ताक मर्चेंट मनसाराम मामाजी जैरी बीरबल राजकिशोर हबीब राजन कपूर दर्शन मौला केदार साइगल डी ज्योति राजेश्वरी कृष्णा वेनी गिरिजा सुरेंद्र राजेश गेस्ट आर्टिस्ट असरानी गीता हेलन जयराज जगदीप जलाल आगा ओम शिपुरी शरद कुमार प्लेबैक लता मंगेशकर किशोर कुमार मन्ना डे राहुल देव बर्मन डांसर्स PL राज दाएं से दोनों एक गांव की कच्ची सड़क से बाईं ओर को जा रहे हैं पब्लिसिटी आइडियाज गीता सिप्पे गांव में खपरेल की छतों वाले घर चारों ओर घर और बीच में काफी खुली जगह पर एक बड़ा सा चबूतरा लोग इधर उधर आ जा रहे हैं एसोसिएट रिकॉर्डिस्ट कुलदीप सूद प्रोसेसिंग इंचार्ज एम बशीर बाएं से दाईं ओर जाते हुए कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं 10-11 साल का एक बच्चा बकरियों को दौड़ा रहा है सामने कच्ची सड़क जिसके साथ में तालाब है दोनों बाईं से दाईं ओर को जा रहे हैं ऑपरेटिव कैमरामैन SM अनवर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर DR ठक्कर कच्चे रास्ते पर दोनों बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं पत्थरों के दो पहाड़ों के बीच में से कच्चे रास्ते पर दोनों धीरे धीरे हमसे दूर जा रहे हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी द्वारका दिवेचा लिरिक्स आनंद बख्शी म्यूजिक RD बर्मन Written by Salim Javed. Produced by GP Sippy. Directed by रमेश सिप्पी। पत्थरों के पहाड़ की तलहटी में ठाकुर की हवेली, दाई और कुछ ही दूरी पर एक छोटा घर, बड़ा सा आंगन, दो बच्चे बकरियों को हांकते हुए ले जा रहे हैं। दोनों आंगन में आए, शॉल ओढ़े ठाकुर पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन दोनों को आते हुए देख रहा है। ठाकुर सीढ़ियां उतर रहा है और उन दोनों को देख रहा है। ठाकुर सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, उन दोनों की ओर देखा और मुड़कर निचली मंजिल पर बने कमरे के अंदर आया। चेलर भी कमरे के अंदर आया।
ठाकुर साहब, आपका खत मिलती मैंने सोचा आपने मुझे याद किया है, अगली गाड़ी से चलाया।
चेलर साहब, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूं।
हाँ हाँ, कहिए, बिल्कुल, कोई भी काम हो।
मुझे दो आदमियों की जरूरत है।
दो आदमी?
रामलाल।
रामलाल ने खिड़की के सामने रखी टेबल की दराज में से फोटो निकालकर जेलर को दी। जेलर ने फोटो ली, ठाकुर की ओर देखा और फिर फोटो की ओर देखा।
इन्हें पहचानते हैं आप?
ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश, एक नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं।
जानता हूं, लेकिन काम कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसे ही आदमियों की जरूरत है।
ठाकुर साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ये दोनों किसी काम के नहीं।
नहीं जेलर साहब, अगर एक तरफ इनमें ये सब खराबियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ खूबियां भी हैं।
खोटा सिक्का तो दोनों ही तरह से खोटा होता है।
सिक्के और इंसान में शायद यही फर्क है। मुझे याद है, दो बरस पहले की बात है, डिस्ट्रिक्ट जमालपुर में मैंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। शाम ढलने से पहले हमें तामली पुलिस स्टेशन पहुंचना था, कोई दूसरा इंतजाम ना हो सका, इसलिए हम एक मालगाड़ी में आ रहे थे। मैं, दो सिपाही और हथकड़ियां पहने ये दोनों बदमाश, जयदेव और वीर,
तीनों गार्ड वाले डिब्बे में हैं।
थानेदार साहब, आप कभी दौलतपुर थाने पे भी थे?
हाँ, पहले था। क्यों?
जय ने आंखें बंद की हुई।
अब याद आया, जब से आपने पकड़ा है तब से सोच रहा हूँ कि आपको पहले कहाँ देखा है। वहाँ वो लालजी भाई बनिया की दुकान थी ना, जहाँ चोरी हो गई थी, याद है आपको?
लालजी भाई बनिया? नहीं तो
नहीं याद। जय, जय याद है जब हम दो दिन के लिए दौलतपुर थाने में बंद हुए थे?
दौलतपुर थाने?
हाँ।
कब बंद हुए थे?
अबे जब वो बनिए की दुकान का ताला तोड़ा था तब। थानेदार यही तो थे, नहीं बेचारा?
मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं।
क्या बोल, इसकी तो आदत है बंद करने की।
जय फिर से आंखें बंद करके सो गया।
तुम दोनों ये धंधे कितने दिनों से कर रहे हो?
बस यूं समझिए थानेदार साहब, वो संभालते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए।
क्यों करते हो ये सर?
जिसलिए आप पुलिस की नौकरी करते हैं, पैसा।
नहीं, मैं पुलिस की नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, उसके लिए तो मेरे पुरखों की खेती बाड़ी ही काफी है। शायद खतरों से खेलने का शौक है मुझे।
हम भी तो रोज खतरों से खेलते हैं।
फर्क है, मैं कानून की हिफाजत के लिए खतरे मोल लेता हूं और तुम कानून तोड़ने के लिए।
और दोनों ही कामों में बहादुरी की जरूरत होती
है। हाँ, जरूरत होती है।
अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो?
अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे।
तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया?
पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख।
मालगाड़ी अचानक एक टनल में रुक गई है। इंजन ठीक हमारे सामने आकर रुका। सामने ही पटरियों पर रास्ता रोकने के लिए लकड़ियां रखी हैं। एक ड्राइवर को गोली लगी, वो नीचे जमीन पर गिरा।
डाकू।
गोली लगने से घायल दूसरा ड्राइवर अपने आप को बचाता हुआ अंदर की ओर भागा। रेलगाड़ी अब उल्टी चल रही है। इंजन में डाकू ने ड्राइवर पर बंदूक तान रखी है। मालगाड़ी टनल से बाहर निकली, सिपाही को गोली लगी, वो जमीन पर गिर गया।
क्यों था?
ठाकुर गार्ड के डिब्बे के बाहर वाली जगह से डाकुओं पर गोलियां चला रहा है। इसी दौरान एक गोली दूसरे सिपाही को लगी, वो भी नीचे गिर गया।
कमांडर साहब, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए।
ठाकुर कोच के अंदर आया, एक ही हथकड़ी से दोनों के हाथ बंधे हैं। दोनों ने हाथ ऊपर उठाए, ठाकुर ने निशाना लगाया, हथकड़ी टूट गई।
लेकिन भागने की कोशिश मत कर।
ठाकुर दाईं ओर चला गया, दोनों खड़े उठे। एक ओर से जय बाहर निकला, वीरू दूसरी ओर से वैगन की छत के ऊपर चढ़ गया है। वैगन की छत के ऊपर से दौड़ते हुए वीरू इंजन की ओर बढ़ रहा है। वीरू एक खुली वैगन में कूदा, खाई के ऊपर से डाकू मालगाड़ी के साथ साथ अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। एक ने वीरू की ओर निशाना लगाया, गोली तेल के ड्रम में लगी, तेल धीरे धीरे रिसने लगा है। दूसरी ट्रेन उल्टी जाती दिखाई दे रही है। हमारे बाईं ओर से तीन डाकू ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। इधर वीरू इंजन तक पहुंच गया है, डाकू ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उसे लात मारी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, डाकू ने वीरू की गर्दन पकड़ ली है, वीरू ने उसे घूसा मारा। डाकू पीछे से आया, उसने वीरू की गर्दन और वीरू ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। सामने से तीन डाकू मालगाड़ी की ओर आते हुए, दाईं ओर से 8-10 डाकुओं की एक और टोली मालगाड़ी की ओर बढ़ती हुई। जय और ठाकुर डाकुओं को आते हुए देख रहे हैं। इधर इंजन में जलते हुए कोयले के चैम्बर में डाकू वीरू को गर्दन से पकड़कर उसमें धकेलने की कोशिश कर रहा है। वीरू ने भी वही कोशिश की। अब दोनों खड़े हुए, वीरू ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन से हटाए, उसे घूसे मारे। डाकू चलती रेलगाड़ी के नीचे ले गया। हमारे सामने स्टीम इंजन के बड़े बड़े पहिए, आप वापस बाईं से दाईं ओर को चलने लगे हैं। ठाकुर ने जय को वहीं से निशाना साधने को कहा और खुद दूसरी ओर चला गया। डाकू मालगाड़ी को वापस जाते हुए देख रहे हैं। डाकुओं की ये टोली अब ट्रेन की ओर बढ़ रही है। यहाँ इंजन में घायल ड्राइवर को वीरू ने एक जगह पर बैठाया और जेब से शराब की बोतल निकालकर उसे दी। घोड़े पर सवार डाकू हाथों में बंदूक के लिए मालगाड़ी का पीछा कर रहे हैं। मालगाड़ी का इंजन काफी धुआं छोड़ता हुआ तेजी से हमारी ओर आ रहा है। हाथ में बंदूक के लिए अपने घोड़ों को तेजी से भगाते हुए डाकू, घोड़ों के तेजी से दौड़ने से काफी धूल उड़ रही है। डाकू धीरे धीरे अब ट्रेन के बिल्कुल बराबर आ गए हैं। ज्यादा भाप बनाने के लिए वीरू चैम्बर में लगातार कोयला डाल रहा है। रेलगाड़ी के दाईं और बाईं ओर डाकू पीछा करते हुए हमारे ठीक सामने कैक्टस का पेड़, उसके ठीक पीछे से बाईं ओर से रेलगाड़ी जा रही है। डाकू सामने से हमारी ओर आ रहे हैं, पीछा करते हुए डाकू। तालाब का किनारा, जय ने निशाना लगाया, एक डाकू घोड़े से गिर गया। इधर ठाकुर भी गोलियां चला रहा है, एक डाकू ने जय पर निशाना साधा, जय नीचे झुका, गोली कोच पर लगी। जय ने निशाना लगाया, तभी कोच की छत से एक डाकू हाथ में तलवार लिए नीचे कूदा, उसे तलवार से वार किया। जय ने उस पर वार किया और वह रेलगाड़ी से नीचे गिर गया है। यहाँ पर चार और डाकू पीछा करते हुए ठाकुर ने गोली चलाई, डाकू तालाब में गिर गया। ट्रेन के साथ साथ डाकू पीछा करते हुए ठाकुर ने रिवॉल्वर से एक और निशाना साधा, डाकू घोड़े से नीचे गिर गया। दूसरे डाकू ने ठाकुर की ओर निशाना लगाया, पहली गोली से ठाकुर बचा, फिर दूसरी गोली, ठाकुर ने अपने आप को सिर झुकाकर बचाया और अब उस पर निशाना लगाया। एक और डाकू नदी में गिरा। मालगाड़ी बाईं से दाईं ओर जाती हुई खुले इलाके से अब मालगाड़ी खाई में आ गई है। डाकू ऊंचाई पर है, मालगाड़ी नीचे, एक डाकू ऊपर से गाड़ी में कूदा, दूसरी ओर से दूसरा डाकू कूदा। वीरू चैम्बर में लगातार कोयला डाल रहा है। वीरू ने इंजन से बाहर देखा, कैमरा दोनों पटरियों के बीच में है। तेजी से हम टनल की ओर जा रहे हैं, वीरू ने मालगाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी है। धीरे धीरे टनल हमारे नजदीक आती हुई, ड्राइवर काफी घबरा रहा है। वीरू ने उसके हाथ से बोतल ली और खुद पीने लगा। जोश में वीरू हॉर्न बजा रहा है। इंजन टनल के दूसरी ओर निकल रहा है, सामने लकड़ियां और तेजी से आते हुए इंजन ने उन सबको तोड़ दिया है। लकड़ियों को तोड़ते हुए इंजन हमारे सामने आता हुआ, वीरू बहुत खुश है। वीरू ने उसके हाथ से बोतल ली और शराब पीने लगा। ड्राइवर घबराते हुए बॉडी पर क्रॉस बना रहा है, उसने बोतल वापस की। वीरू खुशी में हॉर्न बजा रहा है। मालगाड़ी तेजी से जाते हुए डाकू अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। गार्ड वाले डिब्बे के बाहर ठाकुर गोलियां चला रहा है। यहाँ जय पीछा करते हुए ठाकुर पर निशाना लगा रहा है, एक डाकू नीचे गिरा। इधर एक डाकू गाड़ी के बिल्कुल साथ चलते हुए खुली वैगन के रॉड को पकड़कर मालगाड़ी में चढ़ गया है। दूसरे डाकू ने भी ठीक वैसा ही किया। इधर इंजन में वीरू चैम्बर में लगातार कोयला डाल रहा है। ठाकुर ने एक और को गोली से उड़ाया। घोड़ा बिन घुड़सवार हमारी ओर तेजी से भागता हुआ, बाईं से दाईं ओर एक और बिन घुड़सवार घोड़ा। इधर वीरू लगातार चैम्बर में कोयला डाल रहा है। जय गोलियां चला रहा है, एक और डाकू घायल होकर नीचे गिरा। ठाकुर ने अपने आप को बचाया, गोली सिग्नल के लाइट पे लगी। डाकू अभी भी मालगाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वीरू चैंबर में कोयला डाल रहा है, अचानक उसे कुछ शक हुआ। उसने इंजन में से खुली वैगन की ओर देखा। दो डाकू ओपन वैगन में तेल के ड्रमों के बीच में से छिपते छिपते इंजन की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। वीरू वापस आया और अचानक ब्रेक लगाई, जिससे बंधे हुए तेल के ड्रमों की रस्सी टूट गई। ड्रम आपस में टकरा कर नीचे गिर गए। तेल रिसकर बहने लगा है। वीरू ने इंजन के ऊपर से खड़े होकर ये सब देखा, वापस नीचे उतरा, मेलचा लेकर जलते हुए चैंबर में से कोयले निकाले। ड्राइवर ये सब देख रहा है। इंजन की छत पर चढ़कर उसने वो कोयले वैगन में फेंक दिए। जोरदार धमाका हुआ, धमाके के साथ आग लग गई। धमाका सुनकर गार्ड के डिब्बे में से खड़े जय ने बंदूक फेंकी और क्लोज वैगन की छत पर चढ़कर देखा। वीरू हाथ में बेलचा लिए इंजन की छत पर खड़ा खुशी में उछल रहा है। तभी एक गोली ठाकुर के सीने में लगी। जय नीचे कूदा, ठाकुर को अंदर लेकर गया और बिठाया।
आप ठीक है?
मैं ठीक हूं।
एक डाकू गार्ड के डिब्बे की छत पर कूदा। जय ने बाहर निकलकर उस पर गोली चला दी। चलती मालगाड़ी से डाकू नीचे गिरा। जय अंदर की ओर गया। यहाँ वीरू ओपन वैगन से चलता हुआ आ रहा है। तभी हाथ में चाकू एक डाकू उसके सामने आया। वो वीरू पर लगातार वार कर रहा है। अब वीरू ने दोनों हाथों से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है, उसके हाथ से चाकू गिराया और फिर उठाकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया। धीरे धीरे डाकू काफी पीछे रह गए हैं। वीरू जय के पास आया। दोनों भागने लगे। तभी अंदर से हाथ में रिवॉल्वर ताने घायल ठाकुर बाहर आया।
मैंने कहा था भागने की।
ठाकुर बेहोश होकर नीचे गिर गया। दोनों ने ठाकुर की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा।
क्या बोलता है?
भाग तो सकते हैं,
इसे इस हालत में छोड़कर?
इस हालत में छोड़ा तो ये मर जाए,
और अगर अस्पताल ले गए तो गए 4-6 महीने के लिए अंदर। क्या बोलता है?
तू बोल,
निकाल वो।
जय ने सिक्का निकाला।
हेड अस्पताल ले चलते, टेल भाग चलते।
सिक्का उछाला।
हेड
जय के हथेली में सिक्का और ठाकुर पूरी तरह बेहोश होता हुआ।
वो बदमाश हैं, लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं, इसलिए कि लड़ना जानते हैं। बुरे हैं मगर इंसान हैं। जिलर साहब, क्या इन दोनों का आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं?
अगर आजकल किसी जेल में हैं तो आसानी से मिल जाएंगे, और अगर कहीं बाहर हैं तो ऐसे लोगों का कोई ठिकाना तो होता नहीं।
मोटरसाइकिल और उसके साथ में साइड कार, वीरू ड्राइव कर रहा है। जय उछलकर साइड कार में बैठा, मालिक भागते हुए उनके पीछे जा रहा है। दोनों हमारी ओर आते हुए और काफी दूरी से मालिक दौड़ता हुआ आ रहा है। थककर वो रुक गया। दोनों कच्चे रास्ते से गुजरते हुए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती है और उछलती है, और अब घने पेड़ों के बीच में से जा रहे हैं। घने पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए अब पक्की सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर बाई ओर से दाई ओर को जाते हुए जय माउथ ऑर्गन बजा रहा है। पेड़ के नीचे एक आदमी बेंच पर नीले रंग की टोपी पहने लेटा है। वीरू ने आगे ले जाकर मोटरसाइकिल रोकी। दोनों मोटरसाइकिल लेकर वापस आए। जय ने उसकी टोपी चुरा ली। जय ने वो टोपी वीरू को पहना दी।
अरे मेरी जीत, तेरी जीत, तेरी हार, मेरी हार, सुन है।
सड़क के किनारे एक लड़की सर पर मटका उठाए जा रही है। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखा। जय खड़ा उठता तो वीरू उसे बैठाता है, वीरू खड़ा उठता है तो जय उसे बैठाता है। जय ने सिक्का उछालने का आइडिया दिया। दोनों मोटरसाइकिल से उतर कर नीचे आए, सिक्का उछाला, सिक्का जमीन पर गिरा और खड़ा हो गया। दोनों सिक्के को देख रहे हैं, एक दूसरे की ओर देखा, लड़की की ओर देखा। लड़की ये देखकर घबरा गई और भागकर चली गई। जय ने सिक्का उठाया, बीरू ने उसको ड्राइव करने का इशारा किया और खुद साइड कार में बैठ गया। सामने से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक दाईं ओर को निकल गया, ये बाईं ओर को जा रहे हैं। अचानक मोटरसाइकिल का बैलेंस संभल नहीं पा रहा है, सड़क के किनारे चलते हुए लोग घबरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। जय बैलेंस संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। मोटरसाइकिल एक रेडी से टकराई, उसके बाद फिर आगे बढ़ गई। सामने से कार आ रही है, दोनों उसको रुकने का इशारा कर रहे हैं। सड़क पर पड़ी रोड़ी के ढेर से साइड कार टकराई, अब उसका एक पहिया हवा में है। वीरू जोर लगाकर उसे नीचे करने की कोशिश कर रहा है। लोग घबराकर अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं। एक आदमी सड़क के किनारे गिरा और जैसे ही मोटरसाइकिल निकली वो वापस घर की ओर भाग गया। तभी वीरू झटके से साइड कार में बैठा और साइड कार मोटरसाइकिल से अलग हो गई। जय साइड कार को जाते हुए देख रहा है, उसमें वीरू नहीं है। इधर वीरू आया और भागते भागते उसकी पिछली सीट पर बैठ गया।
लोगों को आते हैं तो नजर हम अगर देखो तो नहीं है, हो जुदा या खफा है खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है,
से खुद चलती हुई साइड कार उनके पास आई। उन्होंने उसे फिर से मोटरसाइकिल से जोड़ लिया है और अब वीरू साइड कार में बैठ गया है। वीरू माउथ ऑर्गन बजा रहा है, जय सीटी बजा रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है। वीरू जय के कंधे पर चढ़कर बैठ गया है। वीरू जय के कंधे पर बैठकर माउथ ऑर्गन बजा रहा है। दोनों एक पक्की सड़क पर हमसे दूर जाते हुए। तराजू में से लकड़ी निकाली।
क्या सुन रहे हो भोपाल, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो।
अरे मियाँ कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा, जो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे।
ये लो 2 रुपए का नोट।
हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं। हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा साहब तो खुदा
पैसे तो वापस कर दो।
पेटे मांग रहे हो,
वो नोट तो 2 रुपए का था।
अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है।
2 रुपए में इसी से लकड़ी
और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे। देखो हाँ अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवान की डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ए भाई नहीं है, समझे। चलो
वो आदमी चला गया। सुगमा भोपाली आरे की ओर जा रहा है। सुगमा भोपाली आरे की शेड में आया। जय और वीरू का मुंह हमारी ओर है और पीठ उसकी ओर। दोनों सुगमा भोपाली की ओर मुड़े।
आप लोग यहाँ कैसे हो सुरमा भोपाली?
अरे भैया मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या रहे हो आप लोग?
वो दोनों का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया।
अरे हाँ, इधर पुलिस ने आप दोनों पर 2,000 रुपए का इनाम रखा है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपके साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। आप तो यहाँ से निकल लो।
सुरमा भोपाली, हम जेल जाना चाहते।
अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सुरमा भोपाली ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी क्या जरूरत है? या तो वैसे ही आपके नाम का वारंट निकला हुआ है।
लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें जेल ले जाओ।
क्या किए गए हो आप?
हम पर 2,000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए।
और जब हम छूट कर आए तो उसमें से आधा हमें दे देना, समझे?
क्या कह रहे हो आप? अरे खाम मैं तो कह रही हूँ पान खा लो आप। ले लो पान, बहुत अच्छा है भैया, बहुत बनेगा पान है। इधर में कांका में आ जाते हैं।
जेल में कैदी दो लाइनों में आमने सामने खड़े हैं।
ये साली ब्रेकअप से शुरू हो गई।
बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है।
नया जेलर बहुत खड़ूस है।
आ रहा है।
जेलर तेजी से चलता हुआ अपने 6 सिपाहियों के साथ गलियारे से गुजर रहा है। एक स्टेप वाली सीढ़ी से नीचे उतरते हुए लड़खड़ाया,
अटेंशन! हमने कहा अटेंशन!
सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है।
गुस्से में उसने अपने दाएं मुड़कर सिपाही की ओर देखा।
हम जानते हैं, जानते जानते हैं। कैदी हो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे?
जेलर ने कोने में बैठे कबूतर को देखा।
हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं, घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
कबूतर उड़ा और मेजर के चेहरे से टकराया।
परिंदा हुजूर, कबूतर, कबूतर।
निकालो, अच्छा ना जाए ना। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो।
जेलर वापस मुड़ा, चढ़ते समय फिर लड़खड़ाया।
चलो।
सिपाही उसके पीछे जा रहे हैं।
बड़ा अजीब आदमी है।
जेलर था, जासूस कौन है?
मैं बताऊं? वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ,
हरिराम नाई।
जय वीरू गलियारे से हमारी ओर आते हुए एक जगह पर रुके। अंदर हरिराम एक कैदी की शेप बना रहा है।
हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो।
सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू।
अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को?
काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए।
सुरंग निकाल कहां से रहे हो?
बैल नंबर 9 के बराबर से।
कहीं जेलर को पता ना चल जाए।
किसी को कानों कान खबर नहीं होगी।
दोनों वहां से चले गए।
बस हो गया।
अधूरी शेप पर हरिराम ने उस्तरा बंद किया और चला गया। कैदी की आधी मूंछ रह गई है। जेलर ऑफिस में मेज के किनारे खड़ा होकर ग्लोब को घुमा रहा है। हरिराम दबे पांव उसके पास आया।
आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो?
आप होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है।
आओ, जेल में सुरंग?
लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। खड़ा हुआ,
हमारी जेल में सुरंग?
यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई, हमारी जेल में सुरंग।
वीरू लोहे के एक सरिये के टुकड़े को आग में तपा रहा है। उसने आग बुझाई, उसे उठाया और कुछ ही दूरी पर नीचे रखा। उसके ऊपर टोकरी रख दी। 6 सिपाहियों के साथ जेलर आया। बाईं ओर नीचे बैठा जाए और दाईं ओर आधी मूंछ वाला कैदी खड़े हुए। जेलर की नजर टोकरी पर पड़ी। वो टोकरी के पास पहुंचा।
तो यहां से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे। लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या?
उसने लात मारकर टोकरी हटाई।
तो ये है सुरंग बनाने का औजार।
नीचे झुकते हुए उसने सरिये की ओर हाथ बढ़ाया और उसने जैसे ही उस गरम सरिये को पकड़ा, हरिराम जय के पास ही खड़ा है। वो वहां से भागा। हरिराम जेल के गलियारे से जा रहा है।
आ रहा है।
एक पिलर के पास जय और वीरू छिप कर खड़े हैं।
तो क्या सारा इंतजाम हो चुका है? इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। बस दो चार दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को।
हरिराम तेजी से वहां से चला गया।
हमारे जेल में पिस्तौल
जी,
हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों।
कैदी लाइन में खड़े हैं। जेलर अपने 6 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा, फिर सीढ़ी पर लड़खड़ाया।
ठहरो, जेल तक कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ।
उसने अपनी दाईं ओर इशारा किया।
आधे इधर जाओ।
और अपने बाईं ओर इशारा किया। अब पीछे कोई नहीं है।
और बाकी हमारे साथ हाथ। पॉल।
उसने हरिराम को मुस्कुराते हुए देखा। वो हरिराम के पास आया। हरिराम उसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। जेलर आगे बढ़ा, कैदी के पास पहुंचा जिसकी आधी मूंछ नहीं है। उसने उसके चेहरे की ओर देखा, फिर गौर से देखा, फिर उसे लगा इसके पास बंदूक नहीं हो सकती। वो आगे बढ़ा, अगले कैदी के पास पहुंचा। उसकी लाल आंखें और खतरनाक चेहरा देखकर वो थोड़ा घबराया, आगे बढ़ गया। अब उस कैदी के पास पहुंचा जिसने लिपस्टिक लगा रखी है। उसने जेलर को आंख मारी और कुछ इशारे किए। जेलर आगे बढ़ा, अगले कैदी के पास पहुंचा। उसका कद काफी छोटा है। उसके ठीक सामने खड़े होकर घुटनों के बल झुका, उसके चेहरे को देखा और उसी तरह अब आगे बढ़ा। अगला कैदी जय है। उसने जय की लंबाई देखी, सीधा खड़ा हुआ, गर्दन ऊंची की। जय अपने गाल पर उंगली से खुजली करने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वीरू ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी का छिला हुआ टुकड़ा लगाया।
जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर।
चलू कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है।
पहला ऑर्डर कैंसिल। चार।
जेलर के ऑफिस में दोनों ने जेल के कपड़े बदल लिए हैं। जेलर अपने हाथ में अपनी स्टिक लिए घबराया हुआ खड़ा है। जय ने वो स्टिक ली।
अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट।
पहले बाजे से हमें गेट तक छोड़कर आओ।
जेलर ने हाथ ऊपर किए हुए हैं। दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ऑफिस से निकलकर अब जेल के मेन गेट की ओर आ रहे हैं। गेट के पास पहुंचे,
दरवाजा खुलवाओ।
दरवाजे के दूसरी ओर सिपाही ने छोटी खिड़की खोली।
दरवाजा खोलो।
यस सर।
सिपाही ने दरवाजा खोला, अंदर आया। जय ने उसे हाथ मारकर बेहोश कर दिया। दोनों बाहर गए, कुंडा लगाया,
ये रही चाबी,
और अब उसी खिड़की से चाबी जेलर को दी।
ये रहा पिस्ता।
सूरमा भोपाली टेबल के ऊपर बैठा है।
उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना।
दो चारपाइयों पर छह लोग बैठे हैं।
ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दीनी है ना पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग दो खेती है के जाते के धरवा और कस के धो दिए लपाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
हाँ हाँ,
मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये है नहीं।
दोनों चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए हैं।
पैर पकड़
के जय और बाई और वीरू,
सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
फिर क्या हुआ?
अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने पिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, झटा झट झटा झट, बहुत मारा बहुत मारा।
फिर क्या हुआ?
बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
उसने जोश में अपने हाथ पीछे किए, दोनों की जैकेट को पकड़ा और दोनों उसके सामने आए।
क्या कहा मैंने? हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये थे माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है।
सूरमा भाई।
हाँ भाई।
हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
1000 रुपए?
हाँ हाँ, 1000 रुपए।
अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे।
दोनों लोहे के गेट की ओर जा रहे हैं। गेट खुला, गेट के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। जेल की वर्दी में दोनों पत्थर तोड़ रहे हैं। एक ऊंची जगह पर जेलर दूसरे जेलर के साथ खड़ा है।
मुझे इन्हीं दोनों की तलाश थी। कब तक इन दोनों की सजा खत्म हो जाएगी?
अगले महीने की 18 तारीख को।
दोनों जेल के मेन गेट से बाहर आए, हाथ में बंदूक लिए सिपाही बाहर खड़ा है।
साहब, एक बीड़ी पिलाइए।
सिपाही ने बीड़ी और माचिस निकाल कर दी। जय ने सामने की ओर देखा और फिर वीरू को इशारा किया। शॉल ओढ़े ठाकुर दूसरी ओर खड़ा है। दोनों उसके पास पहुंचे।
इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं?
अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलबीर सिंह।
क्यों, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब?
अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए?
हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं।
कितने चाहिए?
1000
हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं।
रात का समय।
गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू?
हाँ वही।
सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है।
50,000 जिंदा या मुर्दा, तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है जिंदा।
गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया।
जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते।
चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया। आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं?
पुलिस का इनाम भी तुम्हीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए।
कोई पुरानी दुश्मनी?
ये पूछना तुम्हारा काम है।
तो कुछ और पूछें ठाकुर साहब, आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना?
इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल
ने कुर्ते की जेब से पैसे निकालकर उनके सामने रखे।
ये 5,000 हैं। दूसरे पास जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद।
रामलाल और ठाकुर बाहर चले गए।
पढ़ना क्या बोलता है?
जय ने सिक्का निकाला, उसे उछाला। नोटों के ऊपर हाथ के नीचे सिक्का है।
हेड, चलते हैं। टेल,
नो।
100 के नोटों की गड्डी के ऊपर सिक्का, हेड्स। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी। वीरू और जय नीचे उतरे। दोनों बाहर खड़े एक तांगे के पास पहुंचे।
हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो?
वीरू गौर से बसंती को देख रहा है।
अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है।
अरे भाई हमको तो चलना
नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी? तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि
चलिए चलना है चलना है चलना है यार।
हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो मुझे बेफिजुल की बात करने की आदत।
वीरू बसंती के साथ बैठ गया।
पहले इसे बोल देना अच्छा है, बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ
तो ठीक है हम तो।
हाँ हाँ समझ गई, तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछोगे तांगा किस गांव का है? पूछो पूछो।
किस गांव का है जी?
रामगढ़ का है।
अच्छा तो रामगढ़ का है।
क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे?
यूँ के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे।
हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया?
जय पिछले हिस्से में बैठा है।
क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने।
ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है।
जय ने अपने दोनों कानों में रुई डाली।
हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। वही मिसाल हो गए समझो, ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी, और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? बोलो
इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता।
रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो, क्या नाम है?
वीरू।
तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है?
तुम्हारा नाम क्या है बसंती?
चुपे, जब देखो बकबक 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 करता है।
क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं हमारा नाम बसंती है।
पहली बार सुना ये नाम।
बसंती बड़ा प्यारा नाम है।
हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया इसके पीछे भी एक बात है।
क्या बात है बताओ बताओ।
वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा
क्या कहा?
गांव की कच्ची सड़क से तांगा सामने की ओर चला गया। अब तांगा हमारे बाईं ओर से आ रहा है और एक चार दीवारी के सामने आकर रुका। जय तांगे से नीचे उतरा, कानों से रुई निकाली।
हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूँ की कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला।
हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है।
ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया।
यूँ की तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं।
बहुत मेहरबानी आपकी।
चल धन्नो पलट सवार।
पहली मंजिल से रामलाल ने दोनों को देखा।
हाय, क्या प्यारी बातें करती है।
प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती। चल, जहां लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल।
चलना, आइए आइए आइए।
ठाकुर कमरे से बाहर निकलकर आया।
नमस्ते ठाकुर साहब।
यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई?
जी कोई खास नहीं।
आइए।
दोनों ठाकुर के पीछे पीछे कमरे में आए।
अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रामलाल।
रामलाल ने कमरे में रखी तिजोरी में चाबी लगाई, तिजोरी खोली। दोनों की नजरें तिजोरी की ओर हैं।
मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना, मुझे गब्बर चाहिए जिंदा।
जी हाँ याद है, आपको गब्बर चाहिए।
रामलाल ने वीरू को रुपए दिए।
और जिंदा चाहिए, मिल जाएगा।
थके हो गए, आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे।
आइए। आइए। सुनिए, आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूं।
दोनों चलते हुए हमारी ओर आ रहे हैं।
तिजोरी में काफी माल है। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है।
तभी जय की नजर पहली मंजिल से नीचे उतरती सफेद रंग की साड़ी पहने, हाथ में पूजा की थाली लिए राधा पर पड़ी। उसने भी दोनों की ओर देखा। वीरू ने जय को साथ आने का इशारा किया। जय उसी ओर देख रहा है। रामलाल उसके पास आया।
काफी बड़ा मकान है। अच्छा है। कौन कौन रहता है यहाँ पर?
चाबी।
जय ने चाबी ली।
ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा।
पुकार लेंगे।
रामलाल वहां से चला गया।
यार वीरू, चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया।
हमें क्या लेना है जय? 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे।
ठीक है, अगर रात को जागना है तो अभी सो लें।
चल।
जय ने दरवाजे का ताला खोला। दोनों दरवाजे से अंदर की ओर गए। तभी दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों को पीछे से कसकर पकड़ लिया। दोनों ने पकड़ छुड़ाई, कोहनी से मारा। दोनों को उठाकर नीचे पटका। घूंसा मारकर एक ने वीरू की गर्दन दबोच ली है। वीरू ने अपने को छुड़ाया। जय ने एक के पेट में लात मारी, फिर घूंसा। वीरू ने कड़ी पर लटक कर एक को लात मारी। जय वीरू को टांग से पकड़कर नीचे गिरा दिया है। वीरू एक को घूंसा मार रहा है। एक ने आकर वीरू की बाजू को कसकर पकड़ लिया है। दूसरी ओर एक जय की गर्दन को दबा रहा है। वीरू ने एक के पैर को पकड़कर उसे घुमाकर पटक दिया है। जय ने एक को घुसा मारा, फिर पेट में घुसा मारा। दूसरे ने जय के पेट में घुसा मारा और दोनों हाथों से कंधों पर मारा, फिर लात से मारा। जय नीचे गिरा, उठा। उसने उसके घूंसे से अपना बचाव किया और फिर जोर से उसको मारा। वीरू ने उसका हाथ मरोड़ा और फिर उसको घुसा मारा और अलमारी पर पटक दिया। एक और ने जय को पकड़ा हुआ है। जय ने पकड़ा, उसे घूंसा मारा, उसकी गर्दन पकड़ी। उसकी गर्दन पकड़कर दीवार पर घूंसा मारा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक ने कुर्सी उठाई, कुर्सी वीरू पर मारी। वीरू ने उसे पकड़ा। जय ऊपर उछला और लात मारी। खिड़की समेत आदमी बाहर गिरा। जय और वीरू खिड़की से दोनों को जमीन पर पड़े हुए देख रहे हैं। कमरे के अंदर दोनों वापस मुड़े, सामने ठाकुर खड़ा है।
ठाकुर साहब, ये लोग?
ये मेरे आदमी है।
तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया?
मैं देखना चाहता था, अब भी तुम्हें वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया है।
तो फिर क्या देखा आपने?
मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की।
ठाकुर वहां से चला गया।
एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोलकर दिखा दी।
रात का समय, जय ने वीरू को बाहर आने का इशारा किया। दोनों चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकले। धीरे धीरे आंगन से चलते हुए अब उस कमरे की ओर जा रहे हैं जहां पर तिजोरी है। दोनों कमरे के सामने आए, इधर उधर देखा और उस कमरे की ओर गए जहां तिजोरी रखी है। दोनों कमरे में आ गए हैं। दोनों ने अपना सामान नीचे रखा। जय तिजोरी में चाबी लगा रहा है। वीरू के हाथ में टॉर्च है। वीरू बेचैन हो रहा है। वीरू ने जय को टॉर्च पकड़ने को कहा और खुद तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगा। सामने कुछ देखकर जय ने वीरू को इशारा किया। कमरे के दरवाजे पर राधा खड़ी है। दोनों से देखकर थोड़ा सा कुछ आए। राधा कमरे के अंदर आई।
ये लो तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने जो मेरे लिए बेकार है, मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी।
राधा कमरे से बाहर चली गई। दोनों चुपचाप खड़े हैं। राधा बकरी को सहला रही है।
सुनिए।
राधा खड़ी हुई। जय राधा के पास आया। जय ने चाबी जेब से निकालकर राधा की ओर बढ़ाई।
कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा।
राधा ने चाबी ली। जय चला गया। राधा चाबी हाथ में लिए उसे जाते हुए देख रही है। एक चट्टान के ऊपर मंदिर। चट्टान के नीचे बसंती अपनी धन्नों को हरा चारा खिला रही है।
और ले, खा खा के घोड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके, खाए जाओ बकर बकर।
ओ बसंती,
मौसी मैं यहाँ हूँ इस गधेया के पास। लो अब इनकी झिक झिक सुनो।
अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर।
लो और सुनो। अरे मौसी, तुम तो बस हुक्का पानी लेकर चढ़ जाती हो, सुनती तो हो नहीं। कौन सा काम कहा था तुमने वैद्य जी के पास जाने का? ना तो मैं गई थी तुम्हारी दवा लाने के लिए वैद्य जी के पास, अब वो थे नहीं तो मैं क्या करूँ। पड़ोसी कह रहे थे कि वो बहुत बीमार है और दूसरे गाँव गए हैं दवा दारू लाने के लिए।
ओहो, मैंने तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी।
तो फिर कौन सा काम कहा था?
कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए? पर तुझे याद रहे तब ना।
मौसी वहाँ से चली गई।
कच्चे आम? हाँ था तो था, भी लाती हूँ।
दृष्टि बाधित इमाम साहब मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं।
इमाम साहब, मैं आपको छोड़ दूँ?
कौन? बसंती।
हाँ।
आज तू है। कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियाँ मैं बाद में उतरता हूँ। कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है।
हाँ हाँ, तो क्यों नहीं देगा सहारा? क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो? जो इज्जत करेगा, जो मान देगा, वो सहारा क्यों नहीं देगा? वो तो देगा सहारा, क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि
इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं? तुझसे तो छोड़ा छोटा भी है उम्र में।
क्योंकि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब, और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है तो फिर हम समझाएंगे कैसे?
अरे भाई, अहमद का मामू जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है। 300 रुपया तनख्वाह है।
अच्छा?
हाँ, कितनी बार मुझे लिख चुका है अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो, अपने सेठ जी से कहकर दफ्तर में रखवा देंगे, लेकिन ये अहमद है कि जाने को तैयार ही नहीं। कहता है आप अकेले हो जाएंगे।
कैसी हो दीदी?
अरे भाई अहमद, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम ये बताओ, एक तो तुम 10 जमात पास भी हो, अंग्रेजी भी जानते हो, और तुम्हारे जबलपुर के मामू ने लिख भी दिया है कि
तुम भी आ गई अब्बा की बातों में, जो मिलता है उसे यही कहते हैं।
अरे भाई, बसंती ने पूछा, मैंने कह दिया।
क्योंकि हमें बेफिजुल बात करने की आदत तो है ही नहीं, लेकिन सोच लो ये कारखाना बीड़ी का है, जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली, यानी कि ये तो वही मिसाल हो गई कि आम के आम गुटलियों के दाम। अरे
क्या हुआ?
आम, मैं तो फिर भूल गई थी, कच्चे आम।
कच्चे आम?
हाँ, कच्चे आम अचार के लिए।
आम के पेड़ के नीचे बसंती ने आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंका, निशाना नहीं लगा। थोड़ी निचली डाल पर लगे एक आम पर गई। वो उस डाल के पास पहुंची, उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डाल काफी ऊंची है। आम नीचे गिरा, गोली बीरू ने चलाई थी।
अरे यूके, तुम यहाँ कैसे?
यूके, यू ही? बोलो कौन सा आम तोड़ना है?
जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो?
ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ।
तुम तो बड़े निशानची लगते हो।
हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं।
जय एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है।
कौन है?
अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। हाँ तो बताओ कौन सा आम तोड़ू?
एक वो, एक ये और एक ये।
बीरू ने अपनी बंदूक की ओर देखा, ये गोलियां जय ने चलाई। जय ने रिवॉल्वर वापस रखी और फिर लेट गया।
अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी।
हाँ, काफी होशियार है लड़का, अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा।
तुम मुझे भी सिखा सकते हो?
हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ।
दो दिन में सिखा दे?
बहुतों को तो इन्होंने दो घंटे में सिखा दिया है।
दो घंटे में?
अरे इसकी तो आदत है बकबक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ। वो आम नजर आ रहा है ना?
हाँ,
अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो। और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ, और अब आंखें बंद कर लो।
मैंने तो आंख पहले ही बंद कर रखी है।
यूकी ये क्या कह रहे हैं?
इसकी तो आदत है बक बक करने की, तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है?
यूकी अजीब बात कही तुमने, आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या?
तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली?
हाँ।
दोनों नहीं, बाई आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो।
बसंती निशाना लगाने की कोशिश कर रही है और बीरू ने उसकी कमर में हाथ रखा हुआ है और उससे लगभग लिपट रहा है। छटके से दोनों नीचे गिरे। बसंती ने वीरू को धक्का दिया,
लग गया निशाना।
दोनों उठकर बैठे।
यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है।
दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं।
मगर मैं समझ गई, ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों को अकल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठा कर गाँव के चार चक्कर लगा कर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया।
बसंती, मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गला समझ रही हो?
मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठ कर चलाओ पिस्तौल, बसंती चली अपने घर। जय राम जी की।
बसंती चली गई। वीरू ने अपने पाँव का जूता निकाल कर जय की ओर फेंका। ठाकुर के आंगन में गाय और भैंस चरकर वापस आ रहे हैं। जय एक भैंस के ऊपर बैठा हांकता हुआ आ रहा है। राधा सीढ़ियां उतरी, उसने जय को देखा। ये देख राधा धीमे से मुस्कुराई, जय भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। और कुछ शर्माते लजाते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। राधा उसे जाते हुए देख रही है। रात का समय, अपने कमरे के बाहर बैठा जय माउथ ऑर्गन बजा रहा है। राधा पहली मंजिल के बरामदे में लालटेन को बुझा रही है और जय को देख रही है। राधा अब दूसरी लालटेन के पास पहुंची। राधा अब तीसरी लालटेन की ओर जा रही है। जय उसको जाते हुए देख रहा है। राधा तीसरी लालटेन के पास पहुंची। ये ऐसी जगह है जहां से दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। राधा ने लालटेन बुझाई। जय उसकी ओर देख रहा है। राधा अंदर चली गई। एक किसान बैलों द्वारा रहट से पानी निकाल रहा है। लोहार औजार बना रहा है। एक आदमी रुई काट रहा है। बढ़ई गागरी पर चोट कर रहा है। एक आदमी सिलबट्टे पर छेनी हथौड़े से निशान बना रहा है। एक महिला कुएं के सामने कपड़े धो रही है। कैमरा एक पहाड़ के ऊपर है। नीचे कच्चे रास्ते पर तीन डाकू घोड़ों पर गोलियां चलाते हुए दाएं से बाईं ओर जा रहे हैं। गांव में भगदड़ मच गई है। रामलाल ने दूर से ये सब देखा और दौड़ता हुआ हवेली की ओर भागा। लकड़ी के पुल के ऊपर से तीनों डाकू गांव की ओर जा रहे हैं। डाकू गांव के अंदर आ गए हैं। पूरे गांव में वीराना है। तीनों डाकू गांव के बीच बने बड़े चबूतरे के पास पहुंच गए हैं। घर के अंदर से कंधे पर बोरी लादे शंकर बाहर आया। चबूतरे पर पहुंचा।
आओ आओ शंकर, क्या लाए हो?
मालिक जवार लाया हूँ।
मालिक के बच्चे? हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवार लाया है और बाकी के अपनी बेटी के बरातियों को खिलाने के लिए रखिए।
माई बाप जितनी थी सब लाया हूँ।
जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा।
राम दादा।
गाँव के लोग कुछ ना कुछ सामान लेकर चबूतरे के पास आ रहे हैं।
क्या लाए हो धोलिया?
क्यों है मालिक?
ठीक है, रख दो सब माल वहीं पर।
चलो।
काली ने अपना घोड़ा ठाकुर की ओर मोड़ा।
आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो?
और जब तक मैं जिंदा हूँ, गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते।
कौन रोकेगा हमें? तुम?
हाँ, मैं और मेरे आदमी।
ये आदमी? सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है।
मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो।
कालिया ने इधर उधर देखा। पानी की ऊंची टंकी के ऊपर वीरू बंदूक लिए खड़ा है। एक ऊंची चट्टान पर जय खड़ा है। काली ने अपनी गर्दन ठाकुर की ओर घुमाई।
तो बस
तुम्हारे लिए काफी है। काशीराम, सब सामान वापस रखवा दो।
सोच लो ठाकुर, गब्बर को पता चला।
बातों में ध्यान बटाते हुए जैसे ही कालिया ने
को अनाज नहीं दिया,
जीत में रखी तो बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया। बाकी दो डाकुओं के हथियार नीचे गिर गए।
अब जाओ और कब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से।
जाता हूँ ठाकुर, जाता हूँ।
तीनों वापस जा रहे हैं।
चलो।
वीरू की नजर घोड़े की जीन में रखी कालिया की बंदूक पर गई। उसने निशाना लगाया। कालिया की बंदूक नीचे गिर गई। वीरू ने ऊपर से कालिया को बाय बाय का इशारा किया। गांव के लोगों ने जय को कंधे पर उठा लिया है। दूसरी ओर से कुछ लोग वीरू को भी कंधे पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टाने जिनके ऊपर पहरा देते डाकू। ठीक बीच में तीनों सिर झुकाए खड़े हैं। आर्मी के बूट वैसे ही पैंट कमीज और हाथ में बुलेट वाली बेल्ट लिए बाएं से दाएं ओर चहलकदमी करते हुए कदम। एक कोने पर जाकर रुके और फिर से वापस।
कितने आदमी थे?
सरदार दो आदमी थे।
दो आदमी। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए।
खाली हाँ।
गब्बर एक जगह पर बैठ गया।
क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों
उसने अपनी कमीज की जेब से तंबाकू की पोटली निकाली और हाथ में लेकर तंबाकू रगड़ने लगा।
अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना, पूरे 50,000।
तंबाकू मुंह में डाला, पोटली जेब में रखी।
और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
और ये 3 हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए।
गब्बर खड़ा हुआ।
इसकी सजा मिलेगी,
बराबर मिलेगी।
गब्बर एक डाकू के पास आया, उसकी कमर से रिवॉल्वर निकाली।
कितनी गोली है इसके अंदर?
हाँ?
कितनी गोली है?
6 सरदार।
6 गोली, 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली। और आती थी अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं हमको नहीं पता,
हमको कुछ नहीं पता।
इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है।
पीछे की ओर से गब्बर ने पहले डाकू की गर्दन पर रिवॉल्वर रखी।
बच गया साला।
और अब गब्बर दूसरे डाकू के पास पहुंचा, उसने उसके कान के नीचे रिवॉल्वर रखी।
ये भी बच गया।
अब गब्बर कालिया के पास पहुंचा।
तेरा क्या होगा कालिया?
सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
अब गोली खा।
रिवॉल्वर कालिया की कनपट्टी पर रखा।
कमाल हो गया।
तीनों बच गए, ये तीनों आराम जाते तो गोली ने।
धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठे सभी डाकू हंस रहे हैं। घबराए हुए डाकू दूसरे डाकुओं को हंसता हुआ देख रहे हैं। सबको हंसता हुआ देख घबराए हुए तीनों डाकू भी हंसने की कोशिश कर रहे हैं।
तीनों बच गए।
और सभी के साथ अब तीनों डाकू खुलकर हंसने लग गए हैं। गब्बर हाथ में रिवॉल्वर लेकर बुरी तरह से हंस रहा है। अचानक पीछे मुड़ा, तीनों की लाश जमीन पर गिरी हुई है।
जो डर गया समझो मर गया।
गब्बर ने थूका और अपना मुंह साफ किया।
होली कब है? कब है होली? कब?
हवा में उड़ता हुआ गुलाल, बहुत सारे हाथ, थालियों में से गुलाल उठाते हुए कुछ लोग पिचकारी भरते हुए एक दूसरे के ऊपर पिचकारी चलाते हुए के सभी लोग डांस कर रहे हैं, गुलाल उछा रहे हैं, एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं। बसंती कुछ महिलाओं के साथ डांस कर रही है। गांव के बीच में झूले लगे हुए हैं, बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, कुछ लोग गुलाल उड़ाते हुए आ जा रहे हैं। एक जगह पर चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ लोग उसके पास गए और उसको साथ में आने के लिए कहा। जय अब लोगों के बीच में आ गया है और डांस कर रहा है। उसकी नजर चट्टान के ऊपर बने मंदिर पर गई, जहां दरवाजे पर राधा पूजा की थाली हाथ में लिए हुए नीचे देख रही है। बसंती लोगों के बीच में डांस कर रहे हैं। जय एक पेड़ के नीचे आया, वो लगातार राधा को देखे जा रहा है। वीरू बसंती को पिचकारी मारकर भिगो रहा है।
जो हो जाएगी काटो के
लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। वीरू और बसंती मैरी गो राउंड झूले में बैठे हैं और कौन कौन घूम रहे हैं। कुछ लोग जय को रंग लगाते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अचानक जोरदार धमाका हुआ, झूले के ऊपर का कपड़ा पूरी तरह से जल गया है। डाकू गांव के अंदर आ गए हैं, सब लोग यहां वहां भाग रहे हैं। एक डाकू ने घर के अंदर बम फेंका, जोरदार धमाका हुआ, झूले में आग लग चुकी है। डाकुओं ने अफरा तफरी मचा दी है, लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चे को गोद में उठाए भाग रहे हैं। शंकर ने अपनी बेटी को उठाया और घर की ओर भागा। एक आदमी का तांगा पलट गया, बच्ची भागती हुई हमारी ओर आ रही है। मां ने उसे संभालने की कोशिश की और दोनों गिर पड़े। लोग घरों के अंदर भाग रहे हैं, डाकू झोपड़ी को गिरा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। दो लड़कियां भागती हुई हमारी ओर आई, घर का दरवाजा बंद किया। कुछ लोग मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ के भाग रहे हैं। एक डाकू ने उसे बंदूक का बट मारा, वो लुढ़कता हुआ नीचे गिर रहा है। एक और आदमी छत से नीचे गिरा, वीरू बसंती के साथ भागता हुआ आया। वीरू ने एक डाकू को पकड़ा, उसे नीचे गिराया, उसकी रिवॉल्वर ली और बोरियों के पीछे कूद लगाई। दो डाकुओं पर निशाना लगाया, दोनों नीचे गिर गए। यहां जय ने लाठी से मारकर एक डाकू को नीचे गिराया, उसकी बंदूक लेकर झूले के बीच में आड़ ले ली है। एक घर के बाहर खड़ा ठाकुर ये सब देख रहा है। वीरू दाई से बाई और भागता हुआ एक दुकान के पीछे छिप गया है। जय ने एक और डाकू को गिराया, वीरू ने निशाना लगाया, एक और डाकू गिरा। स्लो मोशन में डाकू जमीन पर गिरा, एक और डाकू जमीन पर गिरा। वीरू ने निशाना लगाया, एक और डाकू जमीन पर गिरा। जय ने अपनी बंदूक देखी, उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं। इधर वीरू के पास भी रिवॉल्वर में गोली नहीं है। जय को डाकू ने चारों ओर से घेर लिया है। वीरू दुकान के पीछे छिपा हुआ यह सब देख रहा है। अचानक वीरू की नजर ठाकुर के ठीक नीचे पड़ी बंदूक पर पड़ी। ठाकुर ने वीरू की ओर देखा, वीरू ने बंदूक उठाने का इशारा किया। ठाकुर ने गिरी हुई बंदूक को देखा और अब सामने देखने लग गया। वीरू को गुस्सा आ रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक एक डाकू को घोड़े पे आता देख वो वापस जाकर छिप गया। चैन अपने हाथ से बंदूक नीचे फेंक दी, झूले को पकड़कर उछलकर उसने डाकू को मारा, उसकी बंदूक उठाई, उसकी बंदूक हाथ से छूट गई, वो कूद कर नीचे जमीन पर आ गया है, जमीन पर लेटा हुआ है। गब्बर और सांभा दूर से धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। जय खड़ा हुआ,
अच्छा तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तू कहता था कि दो है, ये दूसरा कहां है?
कहां है रे दूसरा?
ए फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है बता।
अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को।
वीरू दुकान की ओर से निकला।
आओ आओ, अब आए हो हाथ में।
वीरू जय के पास आया। सांबा और गब्बर गांव के बीच बने ऊंचे चबूतरे पर हैं।
शाबास।
गब्बर ने ठाकुर की ओर देखा। गब्बर अपने घोड़े से नीचे उतरा।
क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों
रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए।
निकल गई सब एक इनकी, सब एक गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा सामान लेते हैं तो क्या कोई जुल्म करते हैं? कोई जुल्म नहीं करते, मैं कहता हूं कोई जुल्म नहीं करते। बस अब इसके बाद अगर किसी ने अपना सर उठाया तो उसका सर।
उसने अचानक मुड़कर जय और वीरू की ओर देखा।
सर, तुम इन दोनों को बहुत सुरमा समझते हो ना? ये किराए के टट्टू इसी चौपाल में मेरे पैरों पे सर रखकर दया की भीख मांगेंगे। इन पैरों पे सर रखकर।
गब्बर ने अपना बाया पांव गिरे हुए छोटे ठेले के ऊपर रखा हुआ है।
तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? वो सर, ये पैर। चलो चलो।
जय ने चलना शुरू किया।
जय
धीरे धीरे गब्बर की ओर बढ़ रहा है। जय गब्बर के ठीक सामने पहुंचा, नीचे झुका और जमीन पर पड़े गुलाल को गब्बर की ओर फेंका। बसंती तांगा लेकर आई। जय वीर तांगे में चढ़ गए हैं, डाकू का पीछा कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। दोनों को एक जगह पर उतारा। वीरू मकान की एक ऊंची छत पर चढ़ गया है। जय नीचे से ही डाकुओं पर निशाना लगा रहा है। डाकू गिर रहे हैं। वीरू ने एक और को गिराया। जय ने एक और को फिर गिराया। सामने मशीन गन दिखाई दी। वो दौड़कर गया, एक डाकू उसके ऊपर कूदा, उसने डाकू को मारा, मशीन गन से उसको मार डाला। वीरू दूसरी छत पर कूदा। जय लगातार मशीन गन से गोलियां चला रहा है। वीरू दूसरी छत से नीचे जमीन पर आ गया है, दीवार के पीछे आड़ लेकर गोली चलाने लगा। दोनों अब एक ही जगह खड़े होकर गोलियां चला रहे हैं। डाकू एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। गोलियां लगातार बरसती जा रही हैं। डाकू नीचे गिरते जा रहे हैं। गब्बर लुढ़कता हुआ आया, उसने एक जगह पर आड़ ली। सामने गब्बर को देखा, एक डाकू सामने से आ रहा है। वीरू ने निशाना लगाया। घोड़ा और आदमी दोनों मुंह के बल गिरे। गब्बर सामा के घोड़े पर बैठ गया है। सभी डाकू गांव से वापस भाग रहे हैं। वीरू ने जय को आंख मारी, थम्स अप किया। जय ने भी वीरू को आंख मारी। तभी वीरू की नजर ठाकुर पर गई। वीरू ने रिवॉल्वर फेंकी और दोनों ठाकुर के पास आए। बसंती और दूसरे गांव के लोग भी धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं।
ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके लिए जो इज्जत हमारे दिल में थी वह खत्म हो चुकी है। हम यहाँ आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे मालगाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़ी हुई बंदूक नहीं उठा सका।
तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे?
क्या वजह हो सकती है? तुम बुजदिल हो, डरपोक हो।
नहीं, बहुत लंबी कहानी है। उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर था, हमें खबर मिली गब्बर हरिपुर गांव को लूटने आ रहा है। सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं को भागना पड़ा और मैं गब्बर के पीछे।
गब्बर घोड़े पर आगे आगे भाग रहा है, ठाकुर उसका पीछा कर रहा है। रिवॉल्वर उसके काफी नजदीक है। गब्बर रिवॉल्वर से गोलियां चला रहा है। एक चट्टान के पास गब्बर पहुंचा, उसने घोड़ा रोका, उसने गोली चलाई। ठाकुर घोड़े से नीचे कूदा, चट्टान की आड़ से वो गब्बर पर गोलियां चला रहा है और गब्बर उस पर। गब्बर के रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो गई हैं। उसने अपनी बंदूक निकाली, बंदूक नीचे गिर गई। ठाकुर ने उसके घोड़े को रोकने की कोशिश की, उसने ठाकुर को मारा और घोड़े पर भाग गया। ठाकुर अपने घोड़े पर बैठा और अब उसकी ओर जा रहा है। चट्टानों के बीच में बने रास्ते में से गब्बर के पीछे ठाकुर। गब्बर हमारी ओर आता हुआ और तभी दूसरी ओर से ठाकुर ने उसको पकड़ लिया। दोनों के घोड़े बिल्कुल ठीक साथ साथ हैं। ठाकुर ने कसकर पकड़ रखा है, गब्बर उसे मार रहा है। अचानक ठाकुर ने घोड़े की जीन खींची, तीनों जमीन पर गिर गए हैं। ठाकुर गब्बर के घोड़े पर बैठ गया है। गब्बर ऊंचाई की ओर भाग रहा है। गब्बर दौड़ रहा है, ठाकुर उसके पीछे पीछे घोड़े पर। और अब अचानक ठाकुर ने अपनी बाह से उसकी गर्दन दबोच ली है। साथ साथ तो घोड़ा चला रहा है।
गब्बर सिंह, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है।
गवाहों के बयान और तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्दे हरी सिंह एक आदि और खतरनाक मुजरिम है। अदालत उसे डाका धनी और लूट मार के जुर्म के एवज दफा 400 ताजीरात हिंद के तहत 20 बरस की कैद बामशर्त।
अदालत के गलियारे में हथकड़ी बेड़ी पहने गब्बर आ रहा है, तभी ठाकुर उसके सामने आया।
याद रखूंगा तुझे, याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे।
मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी।
ठाकुर साहब मुबारक हो, आपका पकड़ा हुआ एक और मुजरिम हमारी जेल में आ रहा है।
आदमी बहुत खतरनाक है जेलर साहब।
पुलिस लाइन में मैदान में पीटी चल रही है।
चलिए, आपकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर तो होनी ही थी, इतने दिनों बाद छुट्टी ले रहे हैं आप।
पुराना साहब, अब की बार अगर मैं छुट्टी ना लेता तो घर वाले बातचीत करना ही बंद कर देते।
क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है कि घर वालों को। अपने घर में भी यही प्रॉब्लम है। कहिए कौन कौन है आपके घर में?
सब है, दो बेटे है, दो बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर दे दूंगा। और एक पोता भी है।
पोता? इतनी उम्र नहीं लगती आपकी।
पुराना साहब, गांव में कम उम्र में ही शादी हो जाती है। शादी जल्दी हो गई तो बेटा भी जल्दी हो गया, बेटे की शादी जल्दी हो गई तो पोता भी जल्दी हो गया। अब तो कुछ 7-8 बरस का है।
यानी इतना बड़ा हो गया कि छुट्टी ना लेने पर नाराज हो सके?
हाँ बिल्कुल। सबको मनाने के लिए सबके वास्ते कुछ ना कुछ ले जा रहा हूँ। देख लीजिए खुराना साहब, जिंदगी भर मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली, लेकिन जब घर जाता हूँ तो घर वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा जी,
वेल गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।
इधर एक सब इंस्पेक्टर टेलीग्राम लेकर इंस्पेक्टर के पास आया।
क्या बात है राम सिंह?
सर, गब्बर सिंह जेल से भाग गया।
गब्बर सिंह भाग गया?
यस सर।
हवेली के सामने एक ऊंची चट्टान पर।
हाँ,
तेरे बाप ने तो बहुत शेर मारे ना। चुप बैठ।
चाचा, तुम दादाजी को लेने स्टेशन जा रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ।
बैठिए, भाभी जाके पूछ ले।
तुम पूछ लो ना।
बेटा, भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। चल चल।
माँ माँ, छोड़, सब्जी काटने दे। माँ, मैं चाचा के साथ स्टेशन जाऊँ?
नहीं, स्टेशन नहीं।
अरे बहू, बड़ाई को कह दिया आगे फाटक बना जाएगा। और ये लो चिरौंजी, ये साबुदाना और ये रंग। अरे छोटी बहू,
अभी आती हूँ।
पीली साड़ी पहने राधा हाथ में थाली लेकर भाभी के पास आई। उसने चाबी भाभी को दी।
मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो तू जा, मैं हूँ ना। चलिए।
रामलाल ने थाली पकड़ी और राधा के साथ चला गया।
माँ, मैं स्टेशन जाऊँ?
बोला ना नहीं।
अरे जाना चाहता है तो जाने दो।
नहीं नहीं, वहाँ रेलगाड़ी आती जाती है, मुझे तो डर लगता है।
सब रेलगाड़ियों की दुश्मनी है तुम्हारे सपूत से। देखते ही पटरी छोड़कर पीछे लग जाएंगी तुम तो बस। अच्छा, बाबूजी की पसंद की सब्जी बन रही है। अरे जाने दो उसे।
बिगाड़ो हमें क्या है, ऐसे ही भूत बन के जाओगे? जाओ नहा लो और फूफू से कहो। निर्मला
जी। भाभी
जरा दीपक के कपड़े निकाल दे भिन्नो।
जी अभी निकाल देती हूँ।
जा, अब उस तो कच्ची सब्जी चबाने लगे।
इसे देखो आज काम में लगा है बाबूजी को दिखाने के लिए।
हाँ रोज तो सारा काम पुराने बरगद की चुड़ैल फल के जाती है।
अरे ये पहिया अभी तक यहीं पड़ा है। ये रामलाल भी बुढ़ापे में बिल्कुल सिर्री हो गए हैं। उनसे कहा था कि बैठक और बाबूजी का कमरा साफ करा दो, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं।
राधा के साथ मंदिर गए हैं, आते होंगे, हो जाएगा।
अरे निन्नी ना के तैयार हो जाओ,
स्टेशन जाना है कि नहीं, अभी आया।
मिनी समझ में नहीं आता इस चिड़ीमार को राधा जैसी सुशील लड़की कैसे मिल गई।
बाबूजी से कहकर मैंने बात लगवाई थी, मगर मेरा ऐसा थोड़ी कोई मानता है। लाखों में एक देवरानी लाई हूँ, नहीं तो आजकल की बहुएं डोली से उतरी और आंगन में दीवार खड़ी कर दी। अब देखना अपनी निम्मो के लिए कैसा वर ढूंढती हूँ।
बड़े भाई ने छोटे भाई को अचानक घायल होकर गिरते हुए देखा, उसकी ओर भागा, फ्रेम स्टिल हो गया। भाभी भागी, फ्रेम स्टिल हो गया। निम्मो भागी, फ्रेम स्टिल हो गया। स्लोमो में छोटा भाई चट्टान से नीचे गिर रहा है। बड़ा भाई जमीन पर गिर गया। भाभी जमीन पर गिर गई। झूला हवा में लहरा रहा है। कपड़े सुखाती हुई निम्मो ने रस्सी को पकड़ा हुआ है। रस्सी और बल्लियों के साथ जमीन पर गिर गई। हमारे दाईं ओर दूर चट्टान के ऊपर घोड़े पर बैठा गब्बर आ रहा है। उसने पूरी हवेली की ओर नजर दौड़ाई। तंबाकू हाथ में रगड़ा और अपने मुंह में डाला। तभी दीपक हवेली के अंदर से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने दूर चट्टान पर खड़े गब्बर को देखा। गब्बर उसको देखकर एक शैतानी हंसी हंसा। दीपक ने दूसरी चट्टान की ओर देखा, वहां पर दो डाकू खड़े हैं। एक चट्टान के ऊपर चार और डाकुओं को आते हुए देखा। गब्बर धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतर गया है और अब आंगन में आकर दीपक की ओर बढ़ रहा है। दीपक गब्बर को अपने नजदीक आता हुआ देख रहा है। झूला हवा में लहरा रहा है। गब्बर ने अपने कंधे से बंदूक निकाली। और दीपक की ओर निशाना लगाया। इंजन के पहिए रुकते ही और स्टीम तेजी से निकल रहा है। ठाकुर ने कोच के दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर देखा और नीचे उतरा। उसके हाथ में तोहफे हैं। उसके कदम हमारी ओर आते हुए। हवेली के बाहर लोगों की भीड़ है। पहले एक ने पीछे मुड़कर देखा, फिर दूसरे ने। आशंकित ठाकुर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भीड़ के बीच में से चलता हुआ ठाकुर आगे जा रहा है। उसके दोनों हाथों में तोहफे हैं। उसकी नजर सफेद कपड़े से ढकी पांच लाशों पर पड़ी। रामलाल एक कोने पर बैठा रो रहा है। ठाकुर ने उन पांचों लाशों को देखा। उसने नजर उठाई, एक सीढ़ी पर राधा सफेद धोती पहने बैठी है। ठाकुर के दोनों हाथों से तोहफे नीचे गिर गए। लाल साड़ी के साथ चूड़ियां थी जो टूट गई। राधा ने नजर उठाकर ठाकुर की ओर देखा। राधा की आंखें भर आई हैं, धोती में अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। ठाकुर की आंखों में भी आंसू हैं। बड़ी मुश्किल से चलता हुआ रामलाल ठाकुर के पास आया। उसने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, वो उसके पांव में पड़ गया और रो रहा है।
कब्बर,
रामलाल ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और हां कहा। अचानक तेज हवा चल पड़ी है, चार लाशों के ऊपर से कपड़ा हट गया है। ठाकुर बाएं से दाएं चलता हुआ सभी लाशों को देख रहा है और अब पांचवी लाश के सामने पहुंचा। उसका कपड़ा नहीं हटा है। ठाकुर सिर की ओर बैठा, उसने लाश पर से कपड़ा हटाया। हमारे सामने ठाकुर का चेहरा, उसकी आंखें भरी हुई हैं, चेहरे पर गुस्सा है। गुस्से में उसके हाथ कांप रहे हैं, तेज हवा चल रही है, पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। ठाकुर अपनी जगह से उठा और गुस्से में घोड़े की ओर बढ़ रहा है। वो घोड़े पर चढ़ा और तेजी से लोगों के बीच में से चला गया। गांव के लोग उसे जाते हुए देख रहे हैं। गांव की सड़क से गुजरता हुआ ठाकुर अब चट्टानों के बीच में से गुजर रहा है। कैमरा काफी ऊंचाई पर है। दूर सामने से ठाकुर लकड़ी के पुल से हमारी ओर आता हुआ चट्टानों के बीच में से एक छोटी चट्टान से डाकू उस पर कूदा, दूसरा भी उस पर कूदा। डाकुओं ने ठाकुर पर बंदूकें तान दी।
आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे।
ठाकुर के हाथ बंधे हैं, दो डाकुओं ने उसे पकड़ा हुआ है।
कैसा फट पड़ा रहा इस साला।
कमीने कुत्ते।
दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे।
हरामजादे,
चिल्लाओ, चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ,
मैं तमाशा देखूंगा। हे सांबा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको, अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता। मगर करता क्या, चार चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, याद है।
गब्बर ठाकुर के पास आया।
याद है,
उसके हाथ में तलवार है, वो तलवार उसने उसके कंधे पर रखी।
कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर?
ठाकुर ने गब्बर पर थूका, उसे धक्का दिया, गब्बर नीचे गिर गया।
अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में,
बंदो साले को।
एक पिलर पर दायां और दूसरे पिलर पर बायां हाथ बंधा है। गब्बर ने एक डाकू से दूसरी तलवार मांगी, उसके दोनों हाथों में तलवार है। गब्बर चलता हुआ ठाकुर के पीछे आया।
अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में,
ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते।
बहुत जान तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम?
ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है।
देख देख
फंदा खुल गया,
खुल गया फंदा।
बहुत जान है हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर।
गब्बन्ना से दोनों हाथ ऊपर उठाए। यहां ठाकुर का शॉल जमीन पर गिरा। सभी चुपचाप खड़े हैं। ठाकुर के हाथ नहीं है। राधा ने सभी को देखा। जमीन पर गिरा शॉल उठाया और फिर ठाकुर को उड़ाया। ठाकुर एक कदम आगे बढ़ा, जमीन पर पड़ी बंदूक को देखा। गांव वालों के बीच में से होता हुआ हमारी ओर आ रहा है। राधा उसके पीछे पीछे है। पुलिस इंस्पेक्टर के पास गांव वाले खड़े हैं। वो गांव वालों से बयान ले रहा है।
उसके बाद कुछ देखा तुमने?
नहीं साहब, गोली चलते ही हमने सब खिड़की की वार बंद कर लिए।
ठीक है, यहाँ पर अंगूठा लगा दो।
जी साहब।
इधर आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, यहाँ जो हुआ मुझे इन लोगों से पता चल गया। आपसे एक और बात करनी।
पुलिस को गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वो एक ने एक दिन आपको मिल जाएगा इंस्पेक्टर साहब।
कुछ बता सकते हैं आप गब्बर सिंह के बारे में?
जी नहीं।
ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था।
इंस्पेक्टर ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर झेपते हुए अपना हाथ वापस लिया। ठाकुर वहां से चला गया। कमरे में टेबल पर 10,000 रुपए रखे हैं। ठाकुर कमरे में आया। जयवीरों ने ठाकुर की ओर देखा।
ठाकुर साहब, ये रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने कहा था तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो।
लेकिन
पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे। गब्बर सिंह को मार के
तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहां गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। जिंदा वादा करो तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे।
हम वादा करते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये रुपए आप वापस ले लीजिए।
ठाकुर,
गिरजा लोहार पिपरी गांव से कुछ खबर लेकर आया है।
शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी।
तीनों कमरे से बाहर आए।
जयराम जी की ठाकुर।
जयराम जी की। कहो गिरिजा, क्या खबर लाया?
ठाकुर, पिपरी गांव से दो कोस पे बंजारे आके रुके हैं। हीरा और उसके साथी भी हैं।
ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है। एक दो दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा।
वीरू ने गर्दन घुमाकर जय की ओर देखा। इधर कबीले में गब्बर हीरा के साथ बैठा है। बैले डांसर डांस कर रही है। एक बड़े पत्थर के पीछे से जय वीरू ये सब देख रहे हैं। जय शराब पी रहा है। वीरू ने जय को इशारा किया। इधर सभी मस्त होकर डांस देख रहे हैं। जय एक तंबू में डायनामाइट की तार बिछा रहा है। दूसरे तंबू में हथियारों के पास वीरू तार बिछा रहा है। बिछ चुकी है। जय का हाथ डायनामाइट के हैंडल पर है। जय ने हैंडल दबाया। धमाके हो रहे हैं। दोनों ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। एक ने जय पर गोली चलाई। जय के हाथ पे गोली लगी। जोरदार धमाका हुआ। इधर पहली मंजिल से राधा ने घोड़े से जय और वीरू को आते हुए देखा। जय घायल है। वो दौड़ती हुई नीचे की ओर आ रही है। तेजी में सीढ़ियां उतर रही है। अचानक ठाकुर को नीचे देखकर रुक गई। ठाकुर ने पल्लू को अपने सिर से ढकती हुई राधा को देखा। दोनों ठाकुर के नजदीक पहुंचे। वीरू अपने घोड़े से उतरा और जय को घोड़े से उतरने में मदद की। राधा ने जय की ओर देखा। जय ने राधा की ओर देखा।
रामलाल,
अरे अरे
क्या हुआ इन्हें?
घबराने की कोई बात नहीं, गोली बाजू रगड़ कर निकल गई और जख्मी मामूली।
दोनों ने जय को आंगन में रखे तकत पर बिठाया।
ठाकुर साहब, गोला बारू तो हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया, लेकिन गब्बर बच कर निकल गया।
कोई बात नहीं यार, फिर कभी सही।
ठाकुर चला गया। वीरू ने जेब से शराब की बोतल निकाली।
दवा समझ कर दो घूंट मार ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी।
अगर तू पीना छोड़ दे तो तेरी बहुत सी तकलीफें कम हो जाएंगी।
आप राम राम।
जय माउथ ऑर्गन बजा रहा है और उसकी आंखें हवेली में राधा को ढूंढ रही हैं। राधा अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया।
इमाम साहब सलाम, ये खत है आपका, लीजिए।
जबलपुर से ही आया होगा। अरे गुलजारी लाल, जरा पढ़ भी देते।
जी पढ़े देते। अरे मेरा चश्मा इसी जेब में तो था।
इधर है। वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए।
आ गई बक्कन।
वो हुआ ऐसा कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे। इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल। आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला। और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला, यूं कि।
अच्छा अच्छा, अब जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं। तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे।
हाँ हाँ, मैंने कब मना किया।
हाँ गुलजारी लाल।
जनाब भाई साहब सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
बात सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई। तनख्वाह 200 रुपए हो गई, रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है।
अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा।
हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं।
इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें। अहमद मियां को जल्द अज जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका
मुकैतुल्ला जी। आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी।
ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दे, वो तो आया हुआ है।
देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ।
यूँ की ये तो वही मिसाल हो गई कि
अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। ए मियां, मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ तुम्हारे सामने सारी जिंदगी, कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई।
बच्चू, इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं।
हाँ हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर
क्यों, क्या हुआ?
वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने, और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे को पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है।
जय वीरू एक पेड़ के नीचे बैठे हैं।
ए वीरू, तेरी टांगे वाली।
ए बसंती, आज पैदल तुम्हारी धनों क्या टांगे के साथ भाग गई?
हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धनु इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिवजी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की।
जय राम जी की।
वीरू ने अचानक कुछ सोचा और जय को सैल्यूट मारकर वहां से चला गया। जय उसे जाते हुए देख रहा है। सीढ़ियां चढ़कर बसंती शंकर जी की मूर्ति के पास पहुंची, थाली नंदी के पास रखकर नंदी को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़े।
प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ये कौन बोला?
ये हम बोल रहे हैं।
एक खाली डिब्बे को भूपू जैसा बनाकर
तुम
बीरू उसमें से बोल रहा है।
चमत्कार हो गया,
हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या।
एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार जैसा तुम कहो प्रभु।
वर का नाम है वीरू।
वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 सोमवार और लग जाए। है देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बात हो जारी मारता है।
चुप रहो कन्या।
है बेफुजल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा।
यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया,
मूर्ति के ठीक सामने
उम्र कमारी बैठी रहोगी।
जय ने बसंती के कंधे पर हाथ रखा, उसे चुप रहने का इशारा किया,
धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी,
और उसका हाथ पकड़कर
हमारी आज्ञा है
उसे मूर्ति के पीछे ले जा रहा है।
और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो,
मूर्ति के पीछे आया,
ये वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना
वहां से चला गया
धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे।
अच्छा,
उसने बसंती की ओर देखा, चुप रहने का इशारा किया, और अचानक फिर उसकी ओर देखा। अब खिसिया गया है।
बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही।
तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठ कर रमा धुनी, बसंती चलिए अपने घर।
बसंती, बसंती सुनो तो।
बसंती तांगे पर बैठी, तांगा सड़क पर से जा रहा है। बसंती ने इधर उधर देखा, बीरू ने तांगे के नीचे से अपना सिर निकाला। और अब तांगे के ऊपर आ गया है, बसंती को परेशान कर रहा है।
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है।
बसंती ने वीरू को धक्का दिया, वीरू जमीन पर गिर गया। बसंती तांगा चला रही है, तांगा दाएं से बाएं सड़क पर जाता हुआ, वीरू दौड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है। दौड़ते दौड़ते तांगे के ठीक साथ पे पहुंच गया है। दौड़ते दौड़ते वो तांगे के ऊपर चढ़ा और धन्नो के ऊपर बसंती की ओर मुंह करके बैठा। वीरू ने बसंती को बाहों में भरने की कोशिश की, बसंती ने फिर से धक्का दिया, वीरू साइकिल सवार से टकराया, दोनों जमीन पर गिर गए। वीरू ने उसकी साइकिल उठाई, साइकिल चलाता हुआ वीरू अब तांगे के पास आ गया है। हैंडल पर उल्टा बैठकर साइकिल चला रहा है। अचानक नीचे गिरा और फिर से साइकिल लेकर उसका पीछा कर रहा है। बसंती ने लगाम खींची, धन्नो ने अपने पांव हवा में लहराए, वीरू भी एक पहिए पर साइकिल चला रहा है। वीरू तांगे के ऊपर आ गया है। वीरू बसंती के साथ बैठा हुआ है, बसंती ने वीरू के कंधे पर अपना सिर रख लिया है, वीरू के हाथ में लगाम है। अब वो तांगा चला रहा है, पक्की सड़क पर तांगा हमसे दूर जा रहा है। जया के बंद करके लेटा हुआ है, वीरू बैठा है, उसके हाथ में शराब की बोतल है।
आज मैंने कुछ सोचा है।
कभी कभी ये काम भी करना चाहिए।
आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है।
मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है।
अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है।
और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा आठवां फैसला है।
ये फाइनल है यार।
फाइनल। सुबह से दारू पी रहा ना
यार पार्टनर, मेरा एक काम कर दे।
क्या?
वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
मैं क्यों करूं?
अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। चाहे और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन?
देख शादी तूने करनी, तू जाके बात कर।
जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा।
घर तो तेरा होगा।
एक बीवी होगी।
तेरी होगी।
सात आठ बच्चे होंगे।
तेरे होंगे।
पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना, प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ।
यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली।
समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है।
वीरू खड़ा हुआ।
लानत ऐसी तो।
वो बोतल फेंकने लगा, फिर बोतल से पीने लगा।
इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बचा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला?
साला नौटंकी।
जय ने अपने जूते उठाए, खड़ा हुआ करता है। और फिर अपनी जैकेट उठाई।
क्या बस बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा।
सच?
अरे बेटा बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर।
लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
हार जाता है?
हाँ मौसी, अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
तो क्या जुआरी है?
छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
शराब की बोतल हाथ में लिए टंकी के ऊपर वीर।
जाऊंगा मर जाऊंगा, हट जाओ।
मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
अरे भाई ये सुसाइड क्या होता है?
अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
वो
अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय।
बसंती दौड़ती हुई भीड़ के बीच में आई।
अरे भाई ये गुड बाय क्या होता है?
अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
जय दुकान में बैठा चाय पी रहा है।
तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो?
क्यों, क्या हुआ?
मुझे क्या मालूम क्या हुआ, वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया, देखो।
जय ने टंकी की ओर देखा।
देखा, देखा तुमने?
और फिर चाय का घूंट पिया।
हाँ देखा, कुछ नहीं होगा, जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
यूं कि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो!
जय प्लेट में चाय पीता हुआ टंकी की ओर देख रहा है।
या नतोस, इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
कैसी मुसीबतें आएंगी?
अकाल, सूखा, चक, हर्जा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail. In jail, Buddha chakki pissing.
अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी?
अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूँगा। एक, दो,
कौन
शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है, बसंती से।
वीरू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी, मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा।
वीरू सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, अचानक उसका पांव फिसला, उसने अपने आप को संभाला।
अब मैं क्या करूं चाचा?
तो वहीं बैठ गया और फिर लेट गया। अहमद ने घोड़े की जीन कसी, इमाम साहब के पास आया।
अच्छा अब्बा,
जा रहे हो मियां? जाओ अल्लाह के सपुर्द, पहुंचते याद से खत लिख देना खैरियत का।
जी अब्बा।
मियां तुम खाने पीने के मामले में बड़े लापरवाह हो, जरा सेहत का ख्याल रखना। भाई खुदा बख्शे, हमारे वालिद कहा करते थे कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। चल थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी।
नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा।
अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा।
इमाम साहब ने उसे गले से लगा लिया। सांबा और दूसरे तीन डाकू ताश खेल रहे हैं।
चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है,
चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है।
दूर से अहमद घोड़े से आता हुआ, अचानक उसने घोड़ा रोका। घोड़ों पर बैठे चार डाकू उसके सामने आ गए। अपने अड्डे में गब्बर सीने के बल लेटा हुआ है। उसके हाथ में एक चींटी चल रही है। वो चींटी को गौर से देख रहा है।
ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था।
चींटी हथेली पर पहुंची, उसने दूसरे हाथ से उसे मार दिया। गांव में कच्ची सड़क से घोड़ा वापस आ रहा है, जिस पर अहमद की लाश है। गांव के लोग धीरे धीरे उस घोड़े के पीछे इकट्ठे हो रहे हैं। सभी लोग अपना काम छोड़कर घोड़े के पीछे पीछे जा रहे हैं। यहां वीरू को एक महिला पानी पिला रही है। उसने घोड़े को देखा, लोटा उसके हाथ से नीचे गिरा। जय भी घोड़े को देख रहा है। वीरू उसके पास आया। जय और वीरू घोड़े के पास पहुंचे, उन्होंने घोड़े को रोका। दोनों ने मिलकर अहमद की लाश को उतारकर जमीन पर लिटाया। गांव के सभी लोग घेरा बनाकर खड़े हैं। अहमद की जेब में चिट्ठी है, वीरू ने चिट्ठी निकाली। जय चिट्ठी पढ़ते पढ़ते खड़ा हुआ। गांव का एक आदमी जय के पास आया, उसने चिट्ठी छीनी।
बसंते, ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
वीरू लाश के पास से उठा और इमाम साहब के पास पहुंचा।
इमाम साहब,
कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ,
आप आ पाइए मेरे साथ, आइए।
क्या हुआ, क्या हुआ था बेटा, ये कहाँ लिए जा?
इमाम साहब के पांव अहमद के शरीर से टकराए। वो नीचे बैठा, उसे छूकर देखा।
अहमद, अहमद,
ठाकुर भी आ गया है। इमाम साहब ने अंगूछा उतारा और उसका मुंह ढका।
इलाहे राजू,
इमाम साहब, मैं
अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
हाँ सुन लो,
और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी रामगढ़ के वासियों देख लो, ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो, डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह।
अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने?
ठाकुर ने गांव वालों को देखा और फिर दीनानाथ के पास आया।
दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा।
ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं।
हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में।
लेकिन बेटा
इस खून खराबे से क्या होगा, भला अहिंसा भी तो एक चीज है।
अहिंसा को मैं भी मानता हूँ चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है।
जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर।
ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम, मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा।
अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम अगर ये दोनों इस गांव में रहे।
लोगों ने जय और वीरू की ओर देखा।
अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं।
आप तो वही होगा जो होना चाहिए, हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते।
इमाम साहब अपनी जगह से खड़े हुए।
कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहे, आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, आज पूछूंगा खुदा से मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। कोई मुझे मस्जिद तक।
बसंती इमाम साहब के पास आई, उनका हाथ पकड़ा।
चलो
इमाम साहब बसंती का हाथ पकड़े भीड़ के बीच में से जा रहे हैं। सभी लोग उन दोनों को जाते हुए देख रहे हैं। इमाम साहब बसंती के साथ मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दूर चट्टानों के पीछे से निकलता हुआ सूरज और हमारे दाएं से बाईं ओर घोड़ों पर हाथ में बंदूकें थामे डाकू जा रहे हैं। घोड़े ठीक सूरज के सामने से गुजर रहे हैं। सभी डाकू एक ऐसी जगह पर आए जहां जमीन पर जय और वीरू उल्टा लेटे हुए हैं। एक डाकू घोड़े से नीचे उतरा।
अरे ये क्या है, चिट्ठी?
काले अक्षर भैंस बराबर।
उसने चिट्ठी उठाई।
नहीं तो क्या है, पढ़।
गब्बर सिंह तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। चार मारेंगे?
अरे देख तो लो, दोनों वही हैं कि किसी और को मार के फेंक दिया है।
जय और वीरू पलटे और अब रिवॉल्वर से गोलियां चला रहे हैं। घोड़े पर से एक डाकू नीचे गिरा। चट्टान पर खड़े डाकू को गोली लगी, वो सिर के बल नीचे गिरा। चलते घोड़े से एक और डाकू जमीन पर गिरा। एक डाकू घायल है, दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए। उस घायल डाकू के पास जय और वीरू आए, गब्बर के हाथ में चिट्ठी।
गब्बर सिंह तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे।
गब्बर घायल डाकू के पास आया।
अब आएगा मजा।
घोड़ों पर डाकुओं की लाशें हैं।
बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का, और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, और साथ में खत्म होगा रामगढ़ का एक एक घर।
इधर जय ने भागते हुए मेमने को पकड़ा और उसे राधा को दिया।
ये लीजिए, बहुत तंग कर रहा था आपको।
राधा धीमे से मुस्कुराई, गर्दन झुकाई और हवेली की ओर चली गई। रामलाल हाथ में हुक्का लिए राधा को जाते देख रहा है। जय रामलाल के पास आया।
बहुत दुखियारी लड़की है बेटा, अब तो लगता है मानो मुंह में जवानी नहीं है, और पहले इसे देखता हूँ तो हमेशा वही याद आता है जब हम पहली बार ठाकुर के साथ इसके गांव गए थे होली के दिन।
ठाकुर तांगे पर, रामलाल तांगा चला रहा है। राधा तांगे के पीछे पीछे भाग रही है, उसने ठाकुर पर गुलाल फेंका।
सारे रंग डालेगी तो तेरे बाप के साथ क्या होली खेलूंगा मैं?
अरे बाबू जी के साथ क्या होली खेलेंगे आप? उनको होली खेलना आती कब है? जब मेरे से घर के सामने बुरा लगा कर बैठे, जब भी कोई आया बड़ा हुआ तो बाबू जी ने उनके पैर छू लिए, और छोटा हुआ तो उसने बाबू जी का पैर छू लिया, बस थाली से चुटकी भर रंग लिया लेकर माथे पर लगा दिया, गले लग के हो गई उनकी होली। ये भी कोई होली है? होली तो हम लोग खेलते हैं।
अच्छा, तुम लोग कैसे खेलते हो?
हम लोग वो पारो है ना, पारो।
पारो?
हाँ पारो। पारो के आंगन में एक बड़ी सी पानी की नांद है, हमने सारा रंग उसमें घोल दिया है, सब लोगों पर रंग डालते हैं और हम लोगों को रंग में डालते हैं। कोई भी आया चमक से देख दिया रंग में।
अच्छा ये बता, तेरे घर तो कोई पानी की नान नहीं है? पता चला मैं और रामलाल दोनों खड़े हैं गले गले पानी में।
देखिए मैं क्या करती हूँ।
बाबूजी।
कौन?
आज भी डर गए।
पगली कहीं। अरे ठाकुर साहब कहती भी नहीं। आइए 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 आइए, होली मुबारक हो
आपको भी।
अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ठाकुर चाचा को कुछ मिठाई उठाई खिलाएगी या नहीं?
हाँ अभी लाएगा। बाबूजी आपकी वो थाली लाओ।
कौन सी?
वही आपकी जिसमें से दो चुटकी रंग।
हाँ जा जा जा। आइए ठाकुर साहब आइए, अंदर तो हड़बोंग मची हुई है, वहां चल के बैठते हैं। और कहिए रामलाल जी, सब कुशल मंगल?
बस कृपा है मालिक।
और ठाकुर इस साल फसल तो अच्छी गई ना?
नर्मदा जी मैं तो परदेसी हो गया, ये खेत खलियान की बातें रामलाल ही जाने, हमारे खेतों पर इन्हीं की हुकूमत चलती है।
मिठाई वाला भाई, मिठाई वाला ठाकुर चाचा मुंह खोलिए।
अरे बस बेटी।
रामलाल जी चलिए, रामलाल जी मुंह खोलिए।
अरे बिटिया हम एकदम खुद खा लेंगे।
जी नहीं, हम आपको खिलाएंगे, मुंह खोलिए।
दो ना बिटिया।
नहीं
रामलाल जी, आपकी बेटी समान है, कैसी है तो खा लीजिए।
कहती है तो खा लीजिए, चलिए। अरे बाबा दो चुटकी वाली रंगों की थाली अभी लाई।
बहुत हसमुख है।
अरे ठाकुर साहब दिन भर धमा चौकड़ी, दिन भर धमा
चौकड़ी। चुटकी वाली होली है, होली है भाई होली। ये रही आपकी दो चुटकी वाली रंगों की थाली, मैं जाती हूँ।
अरे अब कहाँ जा रही है?
अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं।
अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से?
ठाकुर चाचा होली रंगों का त्योहार है, लाल पीले नीले हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। हा?
सफेद धोती पहने राधा पौधों को पानी दे रही है,
और अब देखो तो सचमुच कैसी बेरंग हो गई है इसकी दुनिया। अरे भैया जब हाथों की मेहंदी का रंग आंसुओं से धुल जाए तो कौन लोग बचेगा जीवन में?
जय राधा को देखता हुआ कुछ सोच रहा है। अपने कमरे के बाहर जय माउथ ऑर्गन बजा रहा है। पहली मंजिल पर राधा लालटेन बुझा रही है। उसने पहली लालटेन बुझाई। राधा अब दूसरी लालटेन के पास आई, उसे बुझाते हुए जय को देखा। और अब तीसरी लालटेन के पास आई। यहां कमरे से जय राधा की ओर देख रहा है। राधा ने लालटेन बुझाई, जय की ओर देखा। और अपने कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। कमर से चाबी निकालकर तकिए के नीचे रखी और फिर पलंग पर लेट गई।
यार वीरू,
कमरे के बाहर वीरू तखत पर लेटा हुआ है, जय खड़ा है।
मैंने एक फैसला किया है।
अच्छा, अब तू भी फैसला करने लगा?
हाँ यार, सोच रहा हूँ, तू तो कर ही रहा है, मैं भी कर लूँ।
क्या?
शादी।
जय उठकर बैठ गया।
शादी? अबे तू शादी करेगा?
हाँ यार, बहुत हो गया, अब तो यही सोचा है कि एक सीधी सादी जिंदगी हो, एक घर हो, बीवी हो, ढेर सारे बच्चे हो, तेरे कंधे पे खेलें, तूने कहानी
सुना। बस 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 बस, हुजूर जरा तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए ना।
जय वीरू के पास बैठ गया।
आप जानते हैं कि शादी के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है, तो आपने लड़की देखी है?
देखिए।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो?
राधा।
राधा? ये राधा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जानता है कौन है वो?
देख फिर, आजकल तो चोरों डाकुओं को दोबारा बसाने, उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जाती है, और फिर राधा का तो कोई दोष भी नहीं है, क्या उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का कोई अधिकार नहीं?
लेकिन ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे?
समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं नर्मदा जी, किसी को अकेला रखने के लिए नहीं। और फिर क्या दूसरों के डर से हम अपनी राधा को जीते जी मार डाले? अब हमारा आपका क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं, किसके सहारे जिएगी, कहां जाएगी, यही सब सोच कर आया था। ऐसा आप उसके पिता हैं, आप चुके हैं।
नहीं ठाकुर साहब, वो अब आपकी बेटी है, जो आप समझें वो ही ठीक है उसके लिए।
फिर भी आप एक बार देख लीजिए जय को, मैं एक दो दिन में उसे आपके पास भेजता हूं।
राधा कमरे के अंदर खड़ी है, उसने ये बातें सुनी। और इधर गांव में जय नीचे बैठा हुआ है, वीरू उसके पास आया।
जय, किस गुंतारे में बैठा है?
कुछ नहीं यार।
समझ गया, तू किस उधेड़ बुन में है। तू सोच रहा है बात जमेगी नहीं जमेगी, काम होगा नहीं होगा। एक काम करना, तू टॉस कर ले, हेड तो हाँ, टेल तो।
जय खड़ा हुआ।
यार वीरू, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यही क्यों नहीं रह जाते इसी गांव?
हाँ, ये कही ना मेरे दिल की बात।
वीरू उसके पास आया।
कसम से यार, मैं भी यही सोच रहा था, चोरी चकारी की जिंदगी में साला कोई दम नहीं, बहुत दिन जेल और हवालात में काट लिए, अब पैसे वैसे मिल जाएं, इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। पर यार, हल वल तो अपने को चलाना नहीं आता, खेती कैसे होगी?
बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी।
बात तो ठीक है जय, हाँ जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है, शादी करूंगा अपनी तांगे वाली के साथ और 2-3 साल में ही 2-3 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करूंगा। मैंने तो सालों के नाम तक सोच रखे हैं। और जब मैं पूछूंगा, अरे ओ शेरू की माँ, बच्चे कहाँ गए हैं, बड़े प्यार से जवाब देगी,
अरे जाएंगे कहाँ, यहीं गए होंगे कहानी सुनने अपने जय चाचा के पास,
अबे जब तू अपने होने वाले बच्चों की बात करता है उन्हें कहानी सुनने मेरे पास भेज देता है, ये क्या चक्कर?
देख जाए, तू अच्छी तरह जानता है मुझे कहानी वानी याद नहीं रहती यार।
कहानी याद नहीं रहती तुझे? तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था?
कल? अरे कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था और आज सुबह तालाब पर फिर मिलने का वादा किया है।
आज सुबह?
हाँ, मैं चला।
तालाब के पानी में बसंती की परछाई और तभी चार डाकुओं की परछाई उसके आसपास। बसंती के पीछे चार डाकू खड़े हैं। बसंती उठी और अपने तांगे की ओर भागी। धन्नो दौड़ पड़ी। बसंती भागती हुई तांगे के ऊपर चढ़ी, तांगे में बैठकर लगाम थामी। डाकू बसंती का पीछा कर रहे हैं। पेड़ों के बीच में से बाएं से दाईं ओर को तेजी से भागते हुए घोड़े। चारों डाकू हमारी ओर आते हुए। बसंती का तागा दाईं ओर को जाता हुआ। बसंती धंडों को चाबुक मार रही है। एक बच्चा बकरियों के पास खड़ा है। उसने बसंती का पीछा करते हुए डाकू को देखा। डाकू बसंती के काफी नजदीक आ गए हैं। एक डाकू काफी नजदीक आ गया। बसंती ने चाबुक से उस डाकू को मारा। डाकू तांगे के पास आने की कोशिश कर रहा है। बसंती उसे लगातार चाबुक से मार रही है। तांगा पानी के बीच में से गुजर रहा है। पीछे पीछे चारों डाकू। इधर वीरू को लड़के ने दाईं ओर जाने का इशारा किया। वीरू घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए जा रहा है। एक डाकू तांगे के काफी नजदीक आ गया है। तांगे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो तांगे में चढ़ गया है। बसंती ने उस पर वार किया, वो तांगे से नीचे गिर गया। घने पेड़ों के बीच में से वीरू बाएं से दाएं जाता हुआ। डाकू बसंती का पीछा कर रहे हैं। तांगे का एक पहिया काफी ढीला हो गया है और अचानक वो पहिया टूट गया। अब तांगा केवल एक पहिए पर चल रहा है। एक पहिए पर तांगा चलता हुआ सामने से हमारी ओर आता हुआ। बाएं से दाएं की ओर जाता हुआ तीन डाकू पीछे पीछे घोड़े पर। अचानक तांगा पलट गया। इधर वीरू तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ हमारे से दूर जा रहा है। एक डाकू चट्टान के ऊपर से वीरू के ऊपर कूदा। बाकी डाकुओं ने उसे घेर लिया है। डाकू वीरू को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रस्सी से बांध रहे हैं। एक डाकू ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया है, उसके हाथों में रस्सी बांधी। गब्बर ने तमाकू थूका। उसके ठीक सामने बसंती खड़ी है। उसने नीचे से ऊपर तक बसंती को देखा। तेज धूप।
अरे ओ सांभा,
गब्बर उठकर खड़ा हुआ और बसंती के पास आया।
ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पीसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल, बहुत करारे।
सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे, वहां बहुत जोर नाची थी ये।
वाह,
बहुत कटीली नचनिया होगी, जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी?
पांच डाकू रस्सी से बांधे वीरू को लेकर आ रहे हैं।
वीरू!
गब्बर ने बसंती का हाथ पकड़ा,
ठहरो रानी,
और उसे जमीन पर गिरा दिया।
बांधो साले को।
डाकू ने उसको पिलर से बांध दिया है।
बहुत याराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे?
राम साधे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा,
और अब देखोगे भी नहीं।
उसने जमीन से दराती उठाई,
क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है।
जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया, बसंती दौड़ती हुई आई। एक डाकू ने उसे रोका। गब्बर वीरू और बसंती दोनों की ओर देख रहा है। उसने दराती नीचे फेंकी।
बहुत याराना लगता है।
गब्बर बसंती के पास आया।
बहुत याराना लगता है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक।
सांभा ने बंदूक उठाई
और लगा निशाना इस कुत्ते पर।
वीरू पर निशाना लगाया।
अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी।
नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा!
गोली वीरू के गर्दन से घाव बनाती हुई निकली। बसंती उसकी ओर भागी। गब्बर ने उसको पकड़ा।
एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चम्मक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी।
बसंती ने सांभा की ओर देखा, फिर वीरू की ओर, और अब नाच रही है। सभी डाकू शराब पी रहे हैं और नाच देख रहे हैं।
प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं। रुक जाएगी, मिट जाएगी, मर जाएगी, हम जिंदा रहेगी हमारी।
गब्बर ने सभी को इशारा किया। सभी डाकू अपनी शराब की बोतल बसंती के पांव के पास फेंक रहे हैं। गब्बर शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा है। बसंती उन कांच के टुकड़ों पर नाच रही है, उसके पांव से खून निकल रहा है। उसके पांव में एक कांच का टुकड़ा चुभा, वो लंगड़ाते हुए नाच कर रही है। नीचे गिरी, अपने पांव से कांच निकाला, उसके पांव लहूलुहान हैं, बसंती को चक्कर आ रहे हैं। वीरू गुस्से में है, बसंती नीचे बैठ गई। कब्बर ने सांबा की ओर देखा, सांबा ने गोली लोड की। बसंती उठ खड़ी हुई और फिर से नाचने लगी। थककर एक चट्टान पर बैठ गई, फिर उठी। बसंती वीरू के पास पहुंची। उसने उसकी टी शर्ट पकड़ी और बेहोश होकर उसके पांव में गिर गई। सांभा को गोली लगी, वो चट्टान से नीचे गिरा।
अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलो!
गब्बर ने इशारा किया, एक एक करके सभी डाकू अपनी बंदूकें नीचे रख रहे हैं। जय ने वीरू की बंधी रस्सियों पर गोली चलाई। बसंती होश में आई, वीरू ने उसे उठाया। वीरू बसंती को डाकुओं के बीच में से ले जा रहा है। उसने एक बंदूक उठाई और बसंती को दी। कारतूस की पेटी में से बहुत सारे कारतूस उठाए और अपने पास संभाले। उसने डाकू को लात मारी। चट्टान के ऊपर से जय धीरे धीरे पीछे हो रहा है। गब्बर उसे देख रहा है। यहां नीचे वीरू ने बसंती को घोड़े पर बिठाया। जय चट्टान के ऊपर से धीरे धीरे पीछे हुआ। उसने बंदूक फेंकी और चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदा।
इनका पीछा करो, जाओ।
जय कूद कर घोड़े पर बैठा सारे डाकू बंदूक के लिए अपने घोड़ों के साथ अड्डे से निकल रहे हैं। पाई सताई और बसंती और वीरू एक घोड़े पर कुछ ही दूरी पर जाए और उसके बाद डाकुओं की एक बड़ी टोली हमारी ओर आता हुआ जाए, उसके पीछे डाकुओं की टोली। जय पाई से ताई ओर जाता हुआ डाकुओं की टोली उसका पीछा करती हुई। यहाँ वीरू और बसंती घोड़े पर सबसे आगे, जय गोलियां चला रहा है, डाकू भी उस पर गोलियां चला रहे हैं। बसंती और वीरू काफी आगे हैं। जय दाई से बाई ओर जाता हुआ एक डाकू ने निशाना लगाया, जय के घोड़े को गोली लगी, घोड़ा और जय दोनों जमीन पर गिर पड़े। जय उठा और अब पैदल पैदल भाग रहा है अपने घोड़े पर वीरू बसंती के साथ। पुल की इस ओर आ गया है, इधर जय छोटे पत्थरों के ऊपर चढ़ रहा है। वीरू ने घोड़े को भगाया, बसंती को चट्टान की आड़ में छिपाया, पुल के कोने पर बैठकर उसने डाकू पर गोली चलाई। डाकू लगातार गोलियां चला रहे हैं। पुल के दूसरी ओर से जय भागता हुआ आ रहा है। वीरू ने उसका पीछा कर रहे डाकू पर गोली चलाई। जय पुल के ऊपर है, भागता हुआ जा रहा है, डाकू गोली चला रहे हैं। जय तेजी से भागता हुआ हमारी ओर आ रहा है। एक डाकू लगातार मशीन गन से गोलियां चला रहा है। जय की पीठ पर गोली लगी, जय जमीन पर गिर पड़ा, फिर उठा और वीरू के पास पहुंचा, चट्टान पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया।
जय तू ठीक है ना?
वीरू हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं लोगों को इधर ही रोकता हूँ, तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और चार पांच पेटियां कारतूसों के लिए जल्दी।
नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा, तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ।
वीरू कभी तो मेरी बात मान लिया करो, तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुकूंगा।
जय मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा।
लेकिन हमें सभी को तो जाना ही पड़ेगा वीरू, वरना थोड़ी देर में हमारे कारतूस खत्म हो जाएंगे। चलना तेरी बात है मेरी बात, टॉस कर लेते हैं। हेज में रुकता हूं।
जैनिस का उछाला नीचे रखा, हेड्स आया।
लेकिन जय मैं तुम्हें अकेले।
लेकिन कुछ नहीं वीरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती को लेकर जल्दी जाओ, जाओ।
जय अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा, अपना ख्याल रखना। हाँ।
बीरू बसंती को लेकर चला गया। डाकू लगातार गोलियां चला रहे हैं। डाकू लकड़ी के पुल पर आ गए, जय ने गोलियां चलाई तो वो वापस चले गए। एक और डाकू आया, जय ने उसे मारा। दूसरा डाकू आया, उस पर भी गोली चलाई, वो पुल के नीचे गिरा। इधर डाकू ने जय पर गोली चलाई, एक और डाकू ने जय पर गोली चलाई। डाकू लगातार गोलियां चला रहे हैं, जय भी लगातार गोलियां चला रहा है। चट्टान के ऊपर से एक डाकू सर के बल नीचे गिरा। जय पत्थरों के पीछे से गोलियां चला रहा है। जय का काफी खून निकल चुका है, वो एक पत्थर पर पीठ के बल लेटा। एक डाकू ने दूसरे डाकू को पुल के नीचे जाने का इशारा किया। जय ने आवाज सुनी, पत्थर के पीछे से लेटकर उसने पुल की ओर देखा। वो गौर से लकड़ी के पुल को देख रहा है। डाकू लकड़ी के पुल के नीचे से लटक कर इस ओर आ रहा है। फट्टे केवल ऊंचे नीचे होते दिखाई दे रहे हैं। दो फट्टों के बीच की जगह से जय को डाकू की आंख दिखाई दी, उसने उस पर निशाना लगाया, डाकू नीचे गिर गया। जय ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसके पास रिवॉल्वर के सिर्फ दो कारतूस बचे हैं। उसने दोनों कारतूस लोड किए, एक डाकू हाथ में बम लिए दौड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है। कैन उस पर गोली चलाई, बम उसके हाथ से नीचे गिर गया। बम धीरे धीरे पुल से हमारी ओर आ रहा है। लुढ़कता हुआ बम ठीक हमारे सामने है, उसकी बत्ती सुलग रही है, पर बम तक जाने से पहले ही उसकी बत्ती बुझ गई। चट्टान के पीछे से डाकू बम की ओर देख रहे हैं। जय ने पत्थर के पीछे से बम को देखा, उसकी रिवॉल्वर खाली है। तभी उसकी नजर पुल के एक कोने पर गिरी रिवॉल्वर पर पड़ी। चार डाकू पुल से इस ओर आ रहे हैं। रिवॉल्वर उठाकर वो फिर पत्थरों के पीछे छिप गया। जय बम पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर गोली नहीं लग रही है। डाकू लगातार गोलियां चला रहे हैं। पत्थर की आड़ में जय ने रिवॉल्वर को देखा।
सिर्फ एक गोली।
डाकू धीरे धीरे पुल से हमारी ओर आ रहे हैं। जय खड़ा उठा, उसके हाथ में रिवॉल्वर है और वो बम की ओर बढ़ रहा है। डाकू उस पर लगातार गोलियां चला रहे हैं। एक गोली उसके पेट में लगी, वो पुल के किनारे लगी बल्ली पर लटक गया। उसने खड़े होने की कोशिश की, उसने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को थामा हुआ है। बम के नजदीक जा रहा है, उसने बम पर गोली चलाई। जोरदार धमाका हुआ। डाकू दूसरी ओर भाग गए हैं। दूर से वीरू घोड़े पर तेजी से आ रहा है। इधर जाए घिसकता हुआ पत्थर की ओर जा रहा है। वीरू जय के पास पहुंचा, नीचे बैठा और जय को अपने सीने से लगा लिया।
जय तू ठीक है ना?
हाँ वीरू मैं ठीक हूँ। देखा एक एक साले को मार के।
जय 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 तू घबरा मत, घबरा मत।
जब तू मेरे साथ है वीरू तो मैं क्यों घबराने लगा?
जय हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
मेरा खेल खत्म हो गया वीरू।
नहीं
खत्म हो गया।
नहीं नहीं जय नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो।
लेकिन कोई दुख नहीं वीरू, जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। बस एक बात रह जाएगी वीरू, तेरे बच्चों को कहानी नहीं सुना सका।
तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे।
लेकिन वीरू तुम्हें हमारे दोस्ती की कहानी जरूर सुनाना, ये कहानी तो नहीं भूलेगा ना।
कैसी बातें कर रहे हो तुम?
गांव के लोग भी आ गए हैं। जय ने राधा को भागकर करीब आते हुए देखा।
देख ये कहानी भी अधूरी रह गई वीरू, क्या सोचा था और क्या।
जय नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जय
वीरू,
वीरू
नहीं,
नहीं।
राधा दूर से खड़ी होकर ये सब देख रही है। वीरू ने जय को अपने गले से लगा लिया। वीरू ने जय का शरीर जमीन पर रखा। और उसकी छाती पर से रखकर रोने लगा। ठाकुर राधा के पास आया। राधा ठाकुर के सीने पर सर रखकर रो रही है।
इधर वीरू जय के सीने पर सर रखकर रो रहा है, बार बार उसके चेहरे को देख रहा है। राधा ने अपना सर ठाकुर के सीने पर रखा है और वो बिलख बिलख कर रो रही है। वीरू लगातार रो रहा है। वीरू ने अपना हाथ जय के माथे पर रखा। सभी गांव वाले चुपचाप खड़े हैं। जय का हाथ अचानक नीचे को लुढ़का, उसकी हथेली में वही सिक्का है। वीरू ने वो सिक्का उठाया, अपनी हथेली में रखा। सामने हेड्स है, उसने सिक्का पलटा, दूसरी ओर भी हेड्स है। वीरू सिक्के को उलट पलट कर देख रहा है, दोनों ओर हेड्स है। उसने जय की ओर देखा, फिर सिक्के की ओर देखा।
जय, मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है।
सिक्के को मुट्ठी में बंद कर लिया।
मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह।
वीरू खड़ा हुआ, सिक्के को एक ओर फेंका, गुस्से में तेजी से आया और घोड़े के ऊपर बैठा। पुल के ऊपर से होता हुआ गब्बर के अड्डे की ओर जा रहा है। गब्बर के अड्डे के पास पहुंच गया है। रास्ते में तीन डाकू, एक को गोली मारी, एक को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, चट्टान पर खड़े डाकू को मारा, एक और डाकू को मारा, वो चट्टान से नीचे गिरा। चट्टान के नीचे से बाएं से दाईं ओर जाता हुआ एक और डाकू को मारा, एक और डाकू को घायल किया। एक डाकू के ऊपर वीरू कूद पड़ा, उसे घूंसा मारा, चट्टान से टकराकर वो बेहोश हो गया।
गब्बर, आ बाहर आ, तुम है तो सामने कमीने, मैं अपने दोस्त के खून की एक एक बूंद का बदला लेने आया हूँ।
गब्बर एक जगह छिपा है,
तू अपनी मौत से नहीं छुप सकता।
गब्बर बाहर आया, चट्टान के ऊपर से एक डाकू नीचे कूदा, वीरू ने पकड़कर उसे मारा। गब्बर मोटे डंडे से वीरू पर हमला कर रहा है। वीरू ने गब्बर को उठाकर पटक दिया। तभी एक डाकू उसके पीछे आया, गब्बर ने बंदूक चलाई, गोली डाकू को लगी। दूसरा डाकू उस पर हमला कर रहा है, वीरू ने उसे मारा। एक और डाकू ने वीरू पर हमला किया, गब्बर ने वीरू को घूंसा मारा। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों जमीन पर गिर गए हैं। वीरू ने उसके बाल पकड़ लिए हैं। अब गब्बर उसके ऊपर बैठ गया है, वो वीरू को लगातार घूंसे मार रहा है। वीरू बचने की कोशिश कर रहा है। दोनों खड़े हुए, वीरू ने गब्बर की गर्दन पकड़ ली है। गब्बर ने लात से वीरू को मारा, गब्बर ने अपनी पकड़ छुड़ाई, दोनों हाथों से मारा, घूंसा मारा। वीरू ने अपना बचाव किया, वीरू ने उसके पेट में घूंसे मारे। वो गब्बर को मार रहा है, गब्बर जमीन पर गिर गया है, गब्बर मुंह के बल गिर गया। वीरू उसकी पीठ पर बैठा है और डंडे से उसकी गर्दन घोट रहा है।
गब्बर को मेरे हवाले कर दो। नहीं ठाकुर, नहीं।
वादा मत भूलो वीरू।
मुझे कोई वादा याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है इस कमीने के आदमियों ने मेरे चाय की चाल ली है और मैं इसका खून पी जाऊंगा।
तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था। छोड़ दो इसे।
बीरू खड़ा हुआ।
ठाकुर, अगर ये वादा मैंने किया होता तो आज तोड़ देता। ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, इसलिए।
बीरू ने डंडे के दो टुकड़े किए, उन्हें फेंका और चला गया। गब्बर जमीन पर है। ठाकुर धीरे धीरे गब्बर की ओर बढ़ रहा है। उसके पांव की जूतियों में कीलें हैं। गब्बर खड़ा हुआ, वो ठाकुर की ओर आ रहा है। ठाकुर के पांव एक पत्थर के ऊपर।
तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूं मैं।
सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है कब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं।
ठाकुर ने अपना शॉल नीचे गिराया और गब्बर पर कूदा। दोनों नीचे गिरे। गब्बर उठा, ठाकुर ने उसे लात मारी। गब्बर जमीन पर गिरा, फिर उठा। ठाकुर ने फिर लात मारी। गब्बर जमीन पर गिरा, उठने की कोशिश की। ठाकुर ने उसे फिर लात मारी। ठाकुर ने उसके दाएं हाथ के ऊपर अपना जूता रखा। गब्बर का दाएं हाथ काम नहीं कर रहा है, वो अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को संभाल रहा है। ठाकुर ने लात मारकर गब्बर को नीचे गिरा दिया। गब्बर का दायां हाथ काम नहीं कर रहा है, वो जमीन पर नीचे है। गब्बर ने ठाकुर को लात मारी, ठाकुर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि ठाकुर उठ पाता, गब्बर ने उसे लात मारी, उसकी गर्दन पकड़ ली है और उसी गर्दन को घोटने की कोशिश कर रहा है। उसके पेट में घूंसे मारे। अपने बाएं हाथ से वो ठाकुर को मार रहा है। ठाकुर ने अपने सर से उसके पेट में मारा। ठाकुर ने फिर लात मारी। गब्बर एक पत्थर पर गिर गया। ठाकुर ने उसके बाएं हाथ पर भी अपना जूता रखा।
हाथ मुझे दे दे। हाथ मुझे दे दे।
गब्बर के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं। गब्बर अपने दोनों हाथों को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गब्बर धीरे धीरे पीछे हो रहा है। उसने ऊपर देखा, चट्टानों के ऊपर गांव वाले लोग हाथों में लाठियां और हथियार लिए आ गए हैं। ठाकुर उछला, उसने अपने सर से उसे मारा, एक बार फिर मारा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अचानक ठाकुर उछला और दोनों पांवों से उसकी गर्दन पर वार किया। गब्बर काफी घायल हो गया है। गब्बर उठने की कोशिश कर रहा है। ठाकुर ने उसे एक और लात मारी। वो मुंह के बल जमीन पर लेटा हुआ है। उसने ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर के चेहरे पर गुस्सा है। गब्बर को मारने के लिए जैसे ही ठाकुर ने अपना पैर उठाया,
ठाकुर साहब छोड़ दीजिए इसे। मुजरिम को सजा देना कानून का काम है।
कानून को कब पर चाहिए इंस्पेक्टर, जिंदा या मर्दा?
क्या आज आपके अपने जज्बात फर्ज और उसूलों से ज्यादा कीमती हो गए? क्या आज आपकी नजरों में कानून और इंसाफ का वो दर्जा नहीं रहा?
ठाकुर साहब,
मैं जानता हूं आप पर क्या कुछ है, लेकिन ये ना भूलिए कि आप एक ऐसे पुलिस अफसर रहे हैं जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
सिपाही ने इंस्पेक्टर को हथकड़ी दी। इंस्पेक्टर गब्बर के पास आया और उसे हथकड़ी पहनाई। जय की चिता जल रही है। वीरू और ठाकुर खड़े हैं, साथ ही गांव के दूसरे लोग भी खड़े हैं। कैमरा दाई ओर को घूमता हुआ हवेली की पहली मंजिल से अपने कमरे की खिड़की से राधा जलती हुई चिता को देख रही है। राधा ने खिड़की बंद की।
अच्छा ठाकुर साहब, मैं चलता हूं। मैं तुम्हारा तो पार्ट तो नहीं सकता गुरु, समय जरूर सकता हूं।
वीरू कोच में चढ़ गया। उसकी नजर एक सीट पर बैठी हुई बसंती पर पड़ी। बसंती खड़े हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा। वीरू ने सामान नीचे रखा। बसंती वीरू के पास आई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी चल पड़ी है और अब धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है। ठाकुर रेलगाड़ी को जाते हुए देख रहा है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई है। ठाकुर दाई ओर मुड़ा और चला गया। ऑडियो डिस्क्रिप्शन सपोर्टेड बाय सीपी। स्क्रीन पर एंड क्रेडिट्स आ रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रमी सेठ, ऑडियो डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट एंड वॉइस ओवर नरेंद्र जोशी, साउंड इंजीनियर रोहित कुमार, दीपक कुमार, एडिटर प्रदीप सिंह, अमित राजौरा। ऑडियो डिस्क्रिप्शन पोस्ट प्रोडक्शन ट्रैक 1 कम्युनिकेशंस न्यू दिल्ली।